ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के वैलिडिक्ट्री सेशन में समापन सत्र तो नहीं कहेंगे, एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज। जो हमने पिछले दो दिनों से सुनते आ रहे हैं उसका एक दृढ़ संकल्प लेने का मौका, और बहुत ही सुंदर विषय है आज का, वुमेन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के लिए, विशेष रूप से वुमेन सेवियर ऑफ कल्चर। कैसे वो संरक्षक है, कैसे महिला न केवल परिवार का, न केवल समाज का, मूल्यों का, कला और संस्कृति सबका वो कैसे संरक्षण करती है, उसको हम सुनने जा रहे हैं हमारे बहुत अनुभवी वक्ताओं से। तो कार्यक्रम से पूर्व मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे सम्माननीय मंच, हमारे सम्माननीय वक्ता मंच पर आए, उन्हें मैं मंच पर अनुरोध करती हूँ। कृपया स्थान ग्रहण करेंगे अगर पहुँच गए हैं। हमारी आदरणीय राजयोगिनी बी के शील दीदी जी, कृपया आप मंच पर आ जाएं और आप तालियां बजाकर थोड़ा इनका स्वागत भी करते रहें। डॉक्टर सपना प्रियदर्शी जी, कृपया मंच पर आ जाएं। श्रीमती शामिला जी, आप भी मंच पर आ जाएं। राजयोगी बी के मोहन सिंगल भाई, हमारी एसडीएम डॉक्टर अंशु प्रिया जी भी हमारे बीच उपस्थित होंगे। श्रीमती नेहा तिवारी जी, बहन आ जाएं। माउंट आबू से हमारे श्रीमती गीता अग्रवाल जी, कृपया आप मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। हमारी आज की चेयरपर्सन राजयोगिनी बी के शीलू दीदी जी अगर पहुंच गए हैं, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। तो आइए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत कुछ क्षणों के लिए परमपिता परमात्मा की याद से करेंगे।
प्रभु शक्ति का अवतार, नारी है जगत में प्रभु शक्ति का अवतार।
वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार, नारी है जगत में प्रभु शक्ति का अवतार, नारी है जगत में प्रभु शक्ति का अवतार। वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार, वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार। दी है सबसे बड़ी परीक्षा, ये तो गुरु है पहला कर्मों से देती शिक्षा।
कष्टों को झेल कर भी ना कभी रुकी है,
हर बाधा इसके आगे करके नमन झुकी है।
वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार, वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार।
बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे, नारी ही पहला गुरु है और कैसे नारी रक्षक है, संरक्षक है। और वंदे मातरम देश एक भारत ही ऐसा है जिसके आगे वंदे मातरम का उपयोग किया जाता है, और हमारे लिए भी कितनी गर्व की बात है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में 3 दिन से जो महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं उन्होंने अपनी अनुपस्थिति से, अपने प्रेजेंस से किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में यहाँ से जो एनर्जी जा रही है उनकी प्रेजेंस जरूर यहाँ से मार्गदर्शन कराएगी। तो मैं अनुरोध करती हूँ हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को कि आप फूलों और बैजेस के द्वारा स्वागत करेंगे मंच पर उपस्थित हमारे मेहमानों का, गेस्ट स्पीकर्स का। तालियां बजाते रहें, आप सबका भी हम बहुत दिल से स्वागत कर रहे हैं। कहते हैं कि चमन में हर फूल की अदा अपनी होती है, लेकिन फूलों का गुलदस्ता बना दिया जाए तो कुछ बात ही ऐसी होती है। ये फूलों का गुलदस्ता सामने आप सभी मिलकर जो बना रहे हैं, वो फूलों की महक हमारे परिवार को, हमारे विश्व को, हमारी भारत भूमि को एक अलग नया मार्गदर्शन दे रही है। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। हमारे बीच में हमारे आदरणीय मोहन सिंगल भाई भी पहुंच गए हैं, उनका भी तालियों से स्वागत करेंगे। मेरे पास विशिष्ट वक्ताओं के बहुत ही डिटेल में उनके प्रोफाइल हैं, उनका परिचय है, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में समय को देखते हुए आपका परिचय दूंगी, क्योंकि आपके शब्द जो आप बोलेंगे वही आपका बहुत बड़ा परिचय है। हमारे आज के कार्यक्रम की कीनोट स्पीकर, सबसे पहले मैं ब्रह्मा कुमारी शील बहन को, शील दीदी जी जो जोधपुर से हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ। आप ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, आप महिला प्रभाग के कार्यकारी सदस्य भी हैं, और आपको वर्ष 1963 में जयपुर में ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए, फिर आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए करते हुए सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया, और 1964 में, तालियां बजाते रहें, आप हमारे बीच में वो वरिष्ठ शिक्षिका हैं और अनुभवी वक्ता हैं जिन्होंने कि हमारे फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आपने जन कल्याण हेतु कई कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो देश के हमारे सैनिक हो, आर्मी हो या जूरिस्ट, विभिन्न कार्यक्रमों में आपने अपना अनुभव साझा किया हुआ है, और अभी वर्तमान समय में आप जो है समर्पित रूप से जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शील दीदी जी, आपका स्वागत है।
ओम शांति। परमपिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परमात्मा, शिव की प्रिय संतान, सम्माननीय मंच, आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, उषा बहन जी बैठे हैं साथ में, और सभा में उपस्थित सभी माता गुरु को मैं नमन करती हूँ। वेदों में लिखा है कि 100 विद्यार्थी के बराबर एक शिक्षक, 100 शिक्षक के बराबर एक प्राध्यापक, और 100 प्राध्यापक के बराबर एक गुरु, और 100 गुरु के बराबर एक माता। तो आप सब माता गुरु को मैं बहुत बहुत तहे दिल से वंदना करती हूँ। आज का विषय संस्कृति की संरक्षक महिला। संस्कृति किसे कहते हैं? किसी भी समाज का, देश का आहार विहार, वेशभूषा, पर्व त्योहार, इन सबका समूह है संस्कृति। संस्कृति के निर्माण में समाज के हर व्यक्ति का सहयोग होता है। हमारे भारत की संस्कृति कैसी रही है? हमारे भारत की संस्कृति देव संस्कृति रही है। ऐसा समय था जब कहा जाता था कि भारत का हर नर नारायण, हर नारी लक्ष्मी थी। भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं रहते थे। ऐसा हमारा देश था, ऐसी हमारी संस्कृति थी, जिसका वर्णन जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश था मेरा। ऐसी हमारी संस्कृति थी, अतिथि देवो भव, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसी संस्कृति हमारी थी। कालांतर में हमारे ऊपर और संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुआ वो हम सब जानते हैं। एक समय ऐसा था जब एक ही परिवार में कितने लोग इकट्ठे रहते थे, एक ही चूल्हे पर कितने लोगों का खाना बनता था, परिवार में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सहयोग, सद्भावना, त्याग, समर्पणता, ये वैल्यूज जो थी हमारे परिवारों में थी। आज हम देखते हैं तो हमारे परिवार कैसे बन गए। नवग्रह का एक मंदिर है, नवग्रह के मंदिर में दिखाया है कि एक ग्रह का मुंह दूसरे ग्रह से नहीं मिलता है। आज हमारी स्थिति ये हो गई है। पहले घर के बाहर ये लिखा जाता था, अतिथि देवो भव, शुभ लाभ, स्वागतम। आज लिखा जाता है, कुत्तों से सावधान रहिए। बहुत परिवर्तन हो गया। तो हमें फिर से इस प्राचीन संस्कृति को लाना होगा और उसमें महिला का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि माता ही बच्चे की प्रथम गुरु है। जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें तो नारी हमेशा पुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। गांधी जी को गांधी जी बनाने वाली उनकी मां थी। जब विदेश जा रहे थे तो उनकी मां ने प्रतिज्ञा कराई थी, धूम्रपान नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। अगर वो प्रतिज्ञा ना कराती तो गांधी जी महात्मा नहीं बनते और हम सब भी स्वतंत्र भारत में सांस नहीं ले सकते थे। शिवाजी को उसकी मां ने ही कहा था कि इस दुर्ग पर आपको जाकर के झंडा लहराना है। कालिदास जी को कालिदास बनाने वाली, तुलसीदास जी को तुलसीदास बनाने वाली नारी ही है। तो हम देखें तो हमारा कितना बड़ा रोल है। बचपन में एक कहानी हम सबने सुनी है कि एक बच्चे को जब फांसी की सजा दी जाने लगी और उससे पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उस बच्चे ने कहा, मेरी मां को बुलाओ। मां को बुलाया तो मां के कान नाक काट दिया। कहा, ये मां है जिसने मुझे जब मैं पहली बार एक स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया तो माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन किताब चुरा के लाया तो माँ ने कुछ नहीं कहा। आज मेरी जो स्थिति है वो माँ के कारण है। एक दूसरी माँ की भी कहानी आती है। एक बार एक बच्चे को ये दिल हुई कि मैं भी अपने पड़ोसियों के साथ जो यात्रा पे जा रहे थे मैं भी जाऊं। उसने अपनी माँ को बताया, माँ बहुत गरीब थी, साधारण थी, फिर भी बच्चे का दिल रखने के लिए उसने थोड़े से पैसे इकट्ठे किए और एक छोटी सी पोटली बनाकर बच्चे के अंदर के बनियान के अंदर सी करके दे दी कि कभी जरूरत पड़े तो इसको निकाल देना, लेकिन बेटे कभी भी झूठ नहीं बोलना। काफी लाज चला तीर्थ यात्रा की ओर। रास्ते में कुछ चोर मिल गए, डाकू मिल गए, सबसे कुछ ना कुछ लूटपाट की उसने। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? उस बच्चे ने कहा, माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ नहीं बोलना। तो बच्चे ने कहा, मेरी इस कमीज के अंदर, बनियान के अंदर थोड़े से पैसे मेरी माँ ने मुझे छुपा करके दिए हैं, लेकिन माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। उन चोरों ने देखा, डाकुओं ने देखा, सचमुच में उसमें कुछ रुपए थे। उन डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपने हथियार आदि डाल दिए थे। दोनों माताओं की कहानी हमारे सामने है। तो हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छे संस्कार देने हैं, लेकिन उससे पहले हमको अपने अंदर आध्यात्मिक सशक्तिकरण लाना होगा। नेपोलियन ने कहा, गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू गुड नेशन। तो गुड मदर्स किसको कहेंगे? बहुत सारी बातें कल हम लोगों ने पैनल डिस्कशन में भी सुनी। एक अच्छी माँ, एक अच्छी महिला, उसको अपने बच्चों को कैसे पालना देनी है, कितने बजे उठाना है, उसमें खान पान की भी बहुत सारी बातें आती हैं कि हमारा खान पान भी बहुत शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो भोजन शुद्ध सात्विक सतो प्रधान होगा तो हमारे परिवार के ऊपर उसका बहुत बहुत गहरा असर होता है। एक महात्मा जी एक घर में भिक्षा लेने के लिए गए। घर की गृहिणी जो थी उस समय भोजन बना रही थी, बच्चों पर गुस्सा भी कर रही थी, गाली गलौच भी कर रही थी। उसी में से दो रोटी उठा के महात्मा जी को दे दी। महात्मा जी ने खा ली और अपने घर, अपने आश्रम में जाके सो गए। रात को उनके मुख से कुछ अपशब्द निकलने लगे। आसपास जो शिष्य सो रहे थे उन्होंने सोचा, महात्मा गुरु जी को आज क्या हुआ, हमको तो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं और आज ऐसे शब्द क्यों उनके मुख से निकल रहे हैं। सुबह उठे, शिष्यों ने बहुत डरते डरते पूछा, गुरु जी अगर आप नाराज ना हो तो हम आपसे एक बात पूछें, रात को पता नहीं सपने में आप किसको गाली दे रहे थे? महात्मा जी ने जब अपना एनालिसिस किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कल मैंने जिसके हाथ का बना हुआ भोजन खाया था वो माता जो थी उस समय क्रोध कर रही थी, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। तो एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा भोजन शुद्ध सात्विक सतोप्रधान हो, और अगर उस बने हुए भोजन को भगवान को स्वीकार करा देते हैं, भोग लगा देते हैं, तो वो सोने में सुहागा बन जाता है। हमारे पास ऐसे लाखों भाई बहनों के अनुभव हैं। दूसरा, परिवार के हर मेंबर्स के प्रति हमारे मन के अंदर शुभ भावना और शुभकामना हो। कल के पैनल डिस्कशन में आदरणीय चक्रधारी दीदी जी ने एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ हम सबको बताया कि थोड़े समय के लिए अपने बच्चों पर, परिवार के हर सदस्य पर, उनके लिए मन के अंदर शुभ भावना और शुभकामना रखकर उनको बहुत अच्छे प्योर पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमको देने हैं। ये काम हर महिला को करना चाहिए, करना है। तो मैं जब ये सुन रही थी तो मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा था। भारत के एक नजदीकी देश में वहां के राजा की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन भारत के राजाओं की उम्र बहुत लंबी होती। राजा के मन में एक संकल्प आया, अपने दो मंत्रियों को भेजा कि आप भारत जाओ और भारत जाकर के ये देखो कि भारत के राजा क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं जो उनकी उम्र इतनी लंबी होती है और हमारे देश के राजा इतनी जल्दी मर क्यों जाते हैं। दोनों मंत्री भारत पहुंचे, अपना प्रश्न बताया। राजा ने कहा, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन थोड़े समय के लिए आपको यहां रहना होगा। ये मेरे महल के सामने एक छोटा महल है, इस महल में आप कुछ दिन रहिए, और इसके सामने एक पीपल का पेड़ है। इस पीपल के पेड़ के पत्ते जब सूख जाएंगे, झर जाएंगे, तब हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अब आए हैं तो उत्तर तो लेकर जाना पड़ेगा। रहना शुरू कर दिया, रोज बाहर निकलते और रोज देखते कि आज इस पीपल के पत्ते के पेड़ कितने झड़ गए, रोज देखते। और जैसे जैसे पत्ते झड़ते जाते बहुत खुश होते, और एक दिन वो पेड़ झड़ गया और दोनों मंत्री बहुत खुश हो गए और खुशी खुशी से राजा के पास गए। अब हमको हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। पेड़ झड़ गया। राजा ने कहा, इतना हरा भरा पेड़ था, इतनी जल्दी कैसे झड़ गया? तुम लोग क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, हम तो केवल इस पेड़ के पास जाते थे और ये कहते थे जल्दी जल्दी पेड़ के पत्ते झड़ जाएं, तो हम जल्दी अपने देश में वापस जाएं। राजा ने कहा, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। आपके देश का राजा अपनी प्रजा पर बहुत लगान लगाता है, परेशान करता है। हमारे देश का राजा हमारे देश की प्रजा को बहुत प्यार करता है। आपके देश की प्रजा अपने राजा के लिए ये सोचती है कि ये राजा जल्दी मर जाए तो अच्छा है, जल्दी मर जाए तो अच्छा है। और हमारे देश की प्रजा ये सोचती है कि हमारे देश की राजा की उम्र बहुत लंबी हो जाए, बहुत लंबी हो जाए। इसलिए हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। इस बात को तो आज विज्ञान ने भी सिद्ध करके बता दिया है। इसलिए हम अपने परिवार में घर के वातावरण को शुद्ध बनाएं, घर को मंदिर बनाएं, गृहस्थ आश्रम बनाएं। यहां ब्रह्मा कुमारी इसमें ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि घर बार छोड़ना है। कई लोगों को मन में भय होता है, यहाँ ये शिक्षा दी जाती है कि घर को ही आश्रम बनाना है। आज घर अलग हैं और आश्रम अलग हैं। हम किसी आश्रम में जाते हैं, किसी साधु महात्मा के आश्रम में जाते हैं, वहां हमारे बच्चे शोर करते हैं, गंदगी करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, तो हम अपने बच्चों को कहते हैं यहाँ गंदगी नहीं करते हैं, ये आश्रम है, यहाँ लड़ते झगड़ते नहीं हैं, ये आश्रम है। तो हमें भी अपने घर के वातावरण को ऐसा ही सुंदर बनाना है, और उसके लिए हमें पहले अपनी बैटरी को चार्ज करना होगा। और उसके लिए जो विधि आपको यहाँ पर बताई है राजयोग की, प्रतिदिन एक घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट किसी भी शांत एकांत स्थान पर बैठकर उस परम सत्ता के साथ हम अपने मन को जोड़ेंगे तो उससे हमको बहुत शक्ति मिलती है। उसके लिए हम कोई बहानेबाजी न करें कि हमें कोई टाइम नहीं मिलता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हम लोगों को एक शिक्षा बहुत अच्छी दी है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो और 1000 काम छोड़कर भजन करो। जैसे शरीर को भोजन देना जरूरी है, शरीर मोटर है और आत्मा इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली शक्ति, चेतन शक्ति ड्राइवर है। शरीर रथ है और आत्मा रथी है, इसलिए जब रथी निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो हम कहते हैं अर्थी जा रही है। लेकिन आत्मा को भी, मन को भी अच्छा चिंतन देना, शक्ति देना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे मोटर हम चलाते हैं, गाड़ी बहुत अच्छी है, फिएट है, एम्बेसडर है, आल्टो है, बहुत सारी गाड़ियां अच्छी अच्छी हैं हम, लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर अगर कमजोर होता है तो ड्राइव गाड़ी ठीक तरह से नहीं चलती है। हम जाते हैं जब सफर में तो पहले यही कहते हैं कि ड्राइवर को अच्छी तरह से खिला पिला के सुला दो। ड्राइवर का नींद करना, खाना पीना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से शरीर को मेच को चलाने वाली शक्ति, आत्मा का भोजन, ज्ञान, आत्मा का भोजन, मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है। कबीर दास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। एक बार दो युवतियां जा रही थी, एक युवती ने बहुत सुंदर नथ पहनी हुई थी, दूसरी पूछ रही थी ये नथनी किसने दी। कहती है ये तो मेरे प्रियतम जी मुझको दी है, मेरे प्रेमी ने मुझको दी है। पीछे पीछे कबीर दास जी चल रहे थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर दोहा लिख दिया कि नथनी दी यार ने सिमरन बारंबार, और नाक दी करतार ने ताही दिया विसार। भगवान ने हमको कितना कुछ दिया है, अगर हमको कोई कहे कि आप 1 लाख में अपनी 1 आंख बेचो, किडनी बेचो, बेचेंगे? 50 लाख में, 1 करोड़ में भी नहीं बेचेंगे। हम सब करोड़पति बनकर आए हैं संसार के अंदर, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, तो हमें अपना थोड़ा समय निकालकर अपने मन को उस परम सत्ता के साथ जरूर जोड़ना है। इसके लिए हम कोई भी बहानेबाजी नहीं करेंगे। अंत में मैं एक बात कहूंगी, नारी केवल चलती नहीं, दिशा देती है, वो केवल बोलती नहीं, वो संस्कारों की ध्वनि बन जाती है, वो केवल सजती नहीं है, वो संस्कृति के में दीप बनकर जलती है। ऐसी नारी बनकर, दीप बनकर हमें जल करके अपने परिवार को, व्यक्ति समाज की इकाई है, व्यक्तिगत परिवर्तन से ही समाज में परिवर्तन होता है, एक के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन संभव है। इसलिए हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। एक बात बच्चों के बारे में जो कल पैनल डिस्कशन में निकली थी, तो मुझे वो बात एक याद आ रही थी। इस संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र में हम पढ़ते हैं कि अपने बच्चों को हमें कैसे चलाना है, वो शिक्षा परमात्मा ने हम बच्चों को दी। शिक्षा भी दो तो क्षमा भी करो। उनके जीवन का एक वृतांत सुनाना चाहूंगी। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनका हीरे जवाहरात का व्यापार था, कलकत्ता में बहुत बड़ा व्यापार, बहुत अच्छे हीरा पारखी थे, बहुत फेमस व्यापारी थे, अच्छा फर्टिलाइज धंधा था जो परमात्मा श्री बाबा की प्रवेशता के बाद उन्होंने छोड़ा। तो उनकी बेटी निर्मल शांता दीदी जी ने नानभूत सुनाया कि एक बार जब बाबा दुकान में नहीं थे तो बच्चे, ऊपर मकान था नीचे दुकान थी, तो बच्चे गए और दुकान से हीरे ले लिए। किसी ने 4 हीरे उठाए, किसी ने 5 हीरे उठाए, किसी ने 10 हीरे उठाए और ऊपर चले गए। जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा वापस दुकान पर पहुंचे तो जो सेवक था उससे पूछा कि दुकान में इतनी सब चीजें बिखरी पड़ी हैं, बच्चे आए थे क्या? तो कहां बच्चे आए थे और हीरे लेकर के गए। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ऊपर पहुंचे, सब बच्चों को बुलाया और बच्चों से पूछा, अच्छा किसने कितने हीरे लिए हैं? तो एक ने कहा 5 लिए, एक ने कहा 10 लिए, एक ने कहा 2 लिए हैं। अच्छा बच्चे तुम्हें क्लिप बनाना है। बाबा बहुत सुंदर क्लिप बनाते थे और उसमें से ट्यून भी निकलती थी। तो हाँ, तो अच्छा तुम्हारे पास कितने हीरे हैं? तो किसी ने कहा मेरे पास 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं। अच्छा मेरे को दे दो, मैं इन हीरों में और हीरे मिला करके तुमको बहुत अच्छा क्लिप बना करके दूंगा। और बच्चों ने फटाफट वो हीरे दे दिए। तो किस प्रकार उन्होंने बच्चों को हैंडल किया। एक और वृत्तांत भी हमारी दादी जी सुनाते थे कि उन्होंने, उनके घर में एक धर्म गुरु आए हुए थे और उन्होंने उस धर्म गुरु को सोने की चूड़ी दान में दे दी। तो बाबा को कहा उस महात्मा जी ने, आपकी बिटिया ने मेरे को दिया है ये। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, दान दी हुई चीज कभी भी वापिस नहीं लेते। तो बच्चों को हमें प्रेम से, प्यार से, सम्मान से, उनकी विशेषताओं को देखते हुए चलाना है, तभी हमारा ये घर स्वर्ग बन जाएगा और नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी। घर घर को है स्वर्ग बनाना, घर आंगन को फुलवाड़ी, ऐसा बन करके हमें इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगनीशील दीदी जी, आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स के साथ में कैसे नारी जो है वो संस्कृति की संरक्षक है और कैसे हम मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं उसके बारे में आपने सुंदर एग्जाम्पल्स दिए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को, यहाँ उपस्थित महिलाओं को, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ वक्ताओं को और हमारे आदरणीय वुमेन विंग की चेयरपर्सन आदरणीय चक्रधारी दीदी जी को देखते हुए कुछ पंक्तियाँ आपको समर्पित करती हूँ। हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए समुन्दर बनाने के लिए, पर एक महिला, एक आप जैसी महिला संरक्षक काफी है इस घर संसार को स्वर्ग बनाने के लिए, इस घर संसार को स्वर्ग बनाने के लिए। और हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सपना प्रियदर्शी जी उपस्थित हैं। आपने अपने कई सपनों को साकार किया है। आप लाइफ कोच हैं, आध्यात्मिक योगाचार्य और यूफिट और मिस्टिक टैरो से संस्थापक सीईओ भी हैं और उसके साथ साथ आप जो हैं समाज में काफ़ी लोगों को वेलनेस हीलिंग थेरेपी के द्वारा समाधान प्रदान कर रही हैं। इसके साथ साथ आपके काफ़ी शोज भी चलते हैं, टैरो मास्टर भी हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, साथ ही बहुत अच्छी बात है आपने दो पुस्तकें लिखी हैं। एक आपने बहुत ही छोटी आयु में पुस्तक लिखी बचपन का बापू, और दूसरी आपकी पुस्तक है नेवर विजिट अ डॉक्टर हाउ टू स्टे फिट एंड हेल्दी फॉरएवर। तो ये खुद ही अपने शब्दों के द्वारा बताएंगी, और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी हैं, और आपने लाखों लोगों को, बच्चों को, खासकर छात्रों को पढ़ाया भी है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ। उससे पूर्व हमारे बीच आदरणीय शीलू दीदी जी आज के कार्यक्रम के चेयरपर्सन पधार चुके हैं, उनका हम स्वागत करेंगे, और जो वक्ता आए हैं उनका भी फूलों और बैजेस के द्वारा स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सपना प्रियदर्शी जी को। मेरा अनुरोध है जो काफी पीछे जो हमारे गेस्ट बैठे हैं, यहाँ इस साइड काफी जगह है, देर इज लॉट ऑफ स्पेस, तो आप अगर आगे आ जाएं, पीछे जो काफी बैठे हैं वो आगे इस तरफ चेयर से आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, सब यहाँ मूव हो जाए। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे माउंट आबू की पावन धरती पर ब्रह्म कुमारी जैसी दिव्य हस्तियों के बीच में बोलने का अवसर प्राप्त दिया, और मैं अपने विचार रख पा रही हूँ आप सबके सामने। मेरे सामने सभी अतिथिगण, सभी बड़ों को प्रणाम और सभी छोटों को प्यार भरा प्यार। आज का जो विषय है Women, the savior of culture, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बहुत दो तीन दिन से मैं यहां पर हूं और इतना सुंदर यहां का वातावरण है ना, जो मेरे अंदर की नारी है शायद एक नई नारी बनके यहां से जा रही है। हालांकि ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अच्छे वाले है ना, जिसमें आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है शरीर के अंदर, ये मैंने अनुभव यहां पर किया है। कई दिन से मैं यहां पर सुन रही हूं विमेन एम्पावरमेंट की बात है ना, कि विमेन को एम्पावर करना चाहिए। देखिए पावर तो है, हम एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम संस्कृति की रक्षक की बात करें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें नारी है। फिर वो लोरियां सुनाने से लेकर कहानियां सुनाने तक, हमारी दादियां, हमारी माएं, अब तो ये जैसे ख्वाब सा हो गया है। मैं भी एक माँ हूं, मैं भी एक नारी हूं, है ना। तो हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं, कहां खो गई वो लोरिया और कहां खो गई वो कहानियां। वस्त्र किस तरह के हों, खाना किस तरह का खाएं, घर का माहौल कैसा हो, संस्कृति और संस्कार में केवल थोड़ी सी मात्राओं का फर्क है। संस्कार रहेंगे तो संस्कृति रहेगी, संस्कृति रहेगी तो संस्कार रहेंगे। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलती हूं आदि युग में, है ना, जहां हम पुरातन युग की बात करते हैं, आदि शक्ति की बात करते हैं। मैं सुनती आ रही हूं, हमने माँ काली की बात करी, हमने माँ दुर्गा की बात करी, आदि शक्ति की बात करी, माँ सरस्वती की बात करी, माँ लक्ष्मी की बात करी। ये वो युग था जब नारी को देवी कहा जाता था, नारी तुम केवल शुद्धा हो, और दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि नमस्तस्ते 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 नमो नमः विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मैं संक्षिप्त में कहूंगी मातृ रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, है ना, और फिर आता है लज्जा रूपेण संस्थिता। हमें भूलना नहीं चाहिए लज्जा रूपेण संस्थिता। तो वो युग था ये, फिर युग बदला और बदले हम। उस समय नाली सबला थी, क्या थी, सबला, शक्ति, शक्ति का प्रतीक, है ना। फिर युग बदला, हम सब बदले, और फिर लिखा गया अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। अरे भैया वो सबला से अब अबला बन गई, है ना। कब अबला बनी, क्योंकि उसने समर्पण किया, समर्पण किया समाज के प्रति, समर्पण किया परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, बच्चों के प्रति, और उसके इस समर्पण का गलत उपयोग होने लगा, उसका शोषण होने लगा। देखिए लक्ष्मीबाई की बात सबने करी, अहिल्याबाई की बात सबने करी, मेरे कुछ विचार अलग हैं, जिनको कहते हुए शायद हम दो बार सोचते हैं, लेकिन सच्चाई की बात तो करनी पड़ेगी। नारी रक्षक है तो नारी भक्षक भी है, वो चाहे तो बना सकती है, वो चाहे तो मिटा सकती है, ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ कि भाई शोषण होने लगा,
तो नारी को ये लगा कि हमारा तो भैया अपमान हो रहा है, हमें तो समानता नहीं मिल रही है। फिर युग बदला, फिर बदले हम, और नारी की आई अब समानता की बारी कि भैया हमें समानता चाहिए। नारे लगने लगे, किससे समानता? पुरुषों से समानता। अरे भैया पुरुषों से समानता जिसके जन्मदाता तुम हो, जिसको जन्म तुमने दिया है, उससे समानता की बातें होने लगी कि हमें जो है समानता मिलनी चाहिए। और इस समानता की ओढ़ में, इस समानता की आड़ में ऐसा पतन हुआ, ऐसा पतन हुआ कि संस्कृति की धज्जियां उड़ गईं। हमें समानता चाहिए, मां बाप को मां बाप समझना बंद कर दिया, भाई को भाई समझना बंद कर दिया, हमें बाहर जाके काम करना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विडंबना इस चीज की है कि ये जो अबला बनी, इसको किसने बनाया? मैं थोड़ा सा आपको यहां पीछे लेके चलती हूं। अबला को बनाया खुद नारी ने, अपने आप को अबला बनाया, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि नारी रक्षक भी है और भक्षक भी है, एक नारी सब पर भारी। अब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये विडंबना का विषय है कि नारी की अवस्था का कारण उस समय नारी ही थी। कि ठीक है भाई, जोश आया, परिवर्तन आया, परिवर्तन की बातें करने लगे, सशक्तिकरण की बातें करने लगे, समानता की बातें करने लगे, और समानता के साथ भागते 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 वो नारी ये भूल गई कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, क्या मैं उसी दुर्गा का रूप हूं, क्या मैं उसी सरस्वती का रूप हूं, क्या मैं उसी लक्ष्मी का रूप हूं। और अब मुझे बहुत ही दुख के साथ ही कहना पड़ता है, शायद आप सब तो ये विचार भी ना करो, लेकिन देखते हो आप, शहरों में जाइए किस तरह के वस्त्र आज पहन करके हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां घूम रही हैं। वो आती हैं कार्य करने के लिए, जॉब करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन आज छोटे कपड़े पहनने में वो अपनी समझती शान है। सिगरेट हाथ में जब तक ना हो तो मेरा क्या मान है। बस इतना ही नहीं, भाई जाना है मुझे जरा उस रेस्टोरेंट में और उस पब में, थोड़ा डांस हो जाए और हाथ में थोड़ा एक बियर का ग्लास हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी अवस्था हो गई है, और ये सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इस विषय पर भी चर्चा करनी होगी, और हम और आप जैसे लोग ही समाज में ये परिवर्तन लेकर के आएंगे। उनको लगता है कि अगर मैंने बियर का ग्लास नहीं उठाया तो मैं तो भैया एक बहन जी हूं। किसी ने कहा है, नाम नहीं लूंगी, कि तुम्हारी छोटी स्कर्ट तुम्हारे चरित्र को वर्णन नहीं करती है। माना मैंने, तुम्हारी छोटी स्कर्ट तुम्हारे चरित्र का वर्णन नहीं करती है, लेकिन आपके सामने वाले का चरित्र तो वर्णन करती है। उससे कैसे बचाओगे, कैसे घर वापस आओगे? यहां एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊंगी। एनर्जी एनर्जी को खींचती है, जैसा आपका स्वभाव होगा आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो देखिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप सुंदर फूलों की सजी टोकरी जिसमें बहुत ही सुगंधित फूल हो, पुष्प हो, उसको ले जाकर के एक सड़क के किनारे रख दीजिए, और उसी के साथ अपने घर का पुराना बदबूदार कचरा ले जाकर के एकदम साइड में लगा दीजिए सड़क के किनारे, और दूर खड़े होकर के तमाशा देखिए। आप देखोगे थोड़ी देर के बाद जितनी भी मक्खियां हैं वो उस कचरे पे भिनभिनाएंगी, उन पुष्पों के पास नहीं आएंगी। आप समझे? तो यही मैंने आपसे कहा कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। आपका चरित्र अच्छा हो सकता है। क्यों मम्मा? अगर मैंने छोटे कपड़े पहन लिए तो क्या मेरा चरित्र खराब हो गया? मम्मा ने कहा, ना बेटा सब पहनते हैं, तू भी पहन। ये पुरानी नारी आज की नारी को ये कह रही है। आधुनिकता की इस भीड़ में हम खो गए, हमारी संस्कृति खो गई। घर घर में किट्टियों के नाम पर आज क्या तमाशे हो रहे हैं आप देखते हो। वो बेचारे सास ससुर रूम के अंदर बैठे रहते हैं और बहुएं अपनी किट्टियां कर रही होती हैं। ससुर को दवाई देने का टाइम है, बहू तो भूल गई। देखिए ये हकीकत है। हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो ले लेते हैं और बुराई की चर्चा करते नहीं हैं। अगर शरीर का कोई अंग खराब हो गया है तो भैया इससे पहले कि उसे काट के फेंकना पड़े, उसे आप स्वयं ही ठीक करना शुरू करो, उसका इलाज करना शुरू करो। और हमारे समाज में ये जो मैं कहूंगी विकार बढ़ रहा है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। संस्कृति को हम तभी बचा सकते हैं। हम बड़े खुश होते हैं हमारे बच्चे ने ऐसा पहना, हमारे बच्चे उठते ही, जैसे कल भी चक्रधारी दीदी भी कह रही थी, शारदा दीदी भी इस विषय पर बात कर रही थी कि भाई उठते ही बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं। तो संस्कृति कहां गई? मोबाइल के अंदर। बच्चा क्या देख रहा है पता नहीं। आपने मेड के हाथ में अपना बच्चा दे दिया नीचे, वो घूम रहा है वहां, क्या सीख रहा है? वही संस्कृति। उसको आपका बनाया खाना पसंद नहीं आ रहा है, वो पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं, आपकी मेड बना रही है, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है खाना। तो संस्कृति कहां गई? कहीं और गई। अरे इन लड़कियों की बात तो छोड़िए, माताएं आज वो स्वयं भी छोटे छोटे फ्रॉक पहन करके घूमती हैं, घर में बियर का ग्लास लेके अपने बच्चों के सामने घूमती हैं और उम्मीद करती हैं कि मेरा बच्चा कभी ना छुए, ना मेरा बच्चा कभी सिगरेट ना पिए। हाय मेरा लल्ला, भैया आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अरे ये तो बड़े लोग करते हैं। ठीक है, पहले 10 रुपए की जो कीमत थी, 8,000 रुपए की वो कीमत है। बड़े लोग, आप बड़े हो 40 साल की उम्र में, हम तो बड़े हो गए 15 साल की उम्र में। जमाना बदल रहा है, युग बदल रहा है, इसको बदलना होगा। हम इस तरह अपनी संस्कृति को घुटते नहीं देख सकते। तो आप सबको ये कदम उठाना पड़ेगा, अपनी वेशभूषा, अपने त्योहारों, आज त्योहार के नाम पर क्या होता है, दिवाली, होली, इन सब के नाम पर क्या होता है, हुड़दंग मचता है। होली पर जाइए, संस्कृति की बात कर रही हूं मैं, संस्कार अलग है, संस्कृति अलग है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक ही कॉइन के, दे आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, संस्कार है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो संस्कार है। होली के नाम पे बोले शिव शंकर, अरे भैया शिव शंकर से यही सीखा आपने कि मत पी करके घूमिए, शिव शंकर ने तो विष भी पिया था, पी लो है दम, नहीं पियोगे, लेकिन वो हमें लेना था तो हमने वो उठा लिया। लेकिन जो शिव शंकर ने किया, जो शिव शंकर ने त्याग किया, उस त्याग का तव तो लेके दिखाओ भाई तुम। कृष्ण जी तो कितनी गोपिकाओं के साथ घूमते थे, तो हम भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाएंगे। अरे कितना अच्छा है, कृष्ण भगवान ने किया तो मैं क्यों ना करूं, कृष्ण भगवान ने तो और भी कुछ किया था, करके दिखाओ है दम। तो हमारे वेदों में जो लिखा है, भैया जो आपको अच्छा लगा आपने ले लिया, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उसका इस्तेमाल कर लिया और अपनी संस्कृति को एकदम कलंकित कर दिया। एम्पावरमेंट की बात तो बाद में होगी, सबसे पहले जो ये कलंक लगा है इसको हटाना होगा, और ये हम सब अपने समाज में रहते रहते करेंगे, अपने भाई बहनों के साथ, अपने कॉलोनी में जहां आप रह रहे हैं वहां, इस पर आपको कार्य करना होगा। फिर बारी आई, जैसे 2-3 दिन से मैं सुन रही थी, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की, है ना, आध्यात्मिकता की हम बात कर रहे थे, तो इसकी कमी हो गई है, जिस वजह से, क्योंकि वो शून्य हो गया है, जिस वजह से संस्कृति गई। पहले घर घर में पूजा हुआ करती थी, सब मिलकर आरती किया करते थे, आज कोई नहीं करता। सुबह का दिया जलाया जाता था, आज कोई नहीं करता। भोग लगाया जाता था, आज कोई नहीं करता। क्या ये संस्कृति नहीं है? ये भी तो संस्कृति है। जब आप खुद नहीं करोगे तो आपका बच्चा कैसे सीखेगा? आप खुश होते हो केक काट करके, पहले हलवा बनाया जाता था, खीर बनाई जाती थी जन्मदिन पर, आज क्या बनता है? केक। क्या होता है? उसको काट रहे हो, तो काटना मतलब क्या हुआ? टुकड़े करना, इतने सारे टुकड़े किए और सबको खिला दिया। अभी दीदी ने बताया था भोजन, भोजन में जो आपके विचार जाते हैं, व्हाट यू थिंक यू बिकम, मेरा सब्जेक्ट रहा है विजुअलाइजेशन एंड सेल्फ टॉक। दुनिया में कुछ भी संभव हो सकता है केवल विजुअलाइजेशन की ताकत से। तो केक काटना बंद कीजिए, कटिंग मत कीजिए, ठीक है, दूसरे अवसर पर काट लीजिए, लेकिन संस्कृति के नाम पर ना करिए। जन्माष्टमी के दिन केक कटेगा, किसने कहा? हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, भोग लगाइए, आनंदित होइए, भजन लगाइए, नृत्य कीजिए, डांस कीजिए, जो करना है करिए, लेकिन इस तरह की विचारधारा को निकाल करके बाहर फेंकिए। लड़कियां नहीं सुनती आजकल, अपने स्कूल में जाती हैं पीयर प्रेशर है, कॉलेज में जाती हैं पीयर प्रेशर है, हमें पता है हमें ताकत है। अभी अभी दीदी ने बताया कि सही तरीके से बच्चे को समझाओ, सही तरीके से उसको सही मार्ग पर लेकर के आओ, ये बहुत ही बड़ी चुनौती है आज की डेट में हमारे सामने, अपनी संस्कृति को लेकर के उसे बचाना होगा। उसके लिए क्या करना है? थोड़ी सी चीजें जो मेरे दिमाग में है, पहला वापस आइए हल्की पुरानी चीजों को लेकर के, जैसे कि थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ, अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि कितना समय आप अपने बच्चों के साथ रोज बिताते हैं। डेली यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम विथ योर चिल्ड्रन, भले ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए, उनकी सुनिए, अपनी सुनाइए। उसी बीच में बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, कुछ कहानियां सुना डालिए, कुछ पुराने किस्से सुना डालिए, उनके तरीके से, बोरियत के हिसाब से नहीं। वो आपकी वो कहानियां नहीं सुनेंगे आज, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों कहते हैं अरे ये थोड़ी होता है, उनकी भाषा में बात करिए, उनकी इंटरनेट की लैंग्वेज में बात कीजिए, बच्चों को सुधारिए, संस्कृति अपने आप वापस आएगी। दूसरा, ध्यान रहे कि बच्चों के सामने कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, कम से कम करें। अब क्या आदत हो गई है, एक ड्राइंग रूम में एक बच्चा बैठा है, बेटा, एक बेटी, एक मां और एक पिता, और चारों के हाथ में एक एक मोबाइल और सब लगे पड़े हुए हैं, होता है कि नहीं, है ना? तो उसको हटाइए, आप हटाना होगा इसको भी आपको, ठीक है? ये सारी चीजों को हटाइए, फिर खान पीन पे ध्यान दीजिए, वेशभूषा पर ध्यान दीजिए, और अपने बच्चों को वापस उस संस्कृति में लेकर के आइए। और अंतिम चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, अपने आस पड़ोस को ठीक करिए। अरे मैम कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, मेरे अपने पड़ोसी रूठ ना जाए इसलिए चुप रहते हैं। कैसे कहें, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा लेकिन दीदियों की सुनेगा, इस तरह के बड़े बड़े वक्ताओं की सुनेगा। तो आप एक छोटा सा काम करके देखिए, अपने घर में आप सब यहां आए, आपने सुना, जाना, ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, अपने घर में छोटे छोटे प्रोग्राम कीजिए जहां ब्रह्म कुमारी दीदियों को बुलाइए, है ना? मुश्किल खड़ी कर दी मैंने इन लोग के लिए, उनको बुलाइए और उनसे अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाइए, महीने में एक बार या दो बार बुला लीजिए, अपने सक्षमता के हिसाब से उनको वहां बुलाइए, उनकी सुनेंगे। जब वो हर बार हर महीने आपके यहां आपके घर में आके प्रवचन करेंगी तो आसपास के लोगों का दिमाग तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता ही है और हम सब खरबूजे हैं, ठीक है? तो अपने आप को बदलना होगा, और मैं नारी और आप नारी, हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को बचाएंगे। और अंत में चार पंक्तियां कहना चाहती हूं जाते जाते, सबको बांटो बोल प्यार के हीरे और नगीने से, ये मेरी सखियों के लिए, मेरी नारी शक्ति के लिए, सबको बांटो बोल प्यार के हीरे और नगीने से, मिटा सको तो सखी मिटा दो तुम नफरत को सीने से, हंसी खुशी से जो भी बीते साल पलों से लगते हैं। तो अगर आप अच्छा माहौल बनाएंगे, संस्कार लाएंगे, संस्कृति लाएंगे तो ऐसा होगा, हंसी खुशी से जो भी बीते साल पलों से लगते हैं मगर कष्ट के पल लगते हैं सचमुच सभी महीने से, जीना दुष्भर हो जाएगा। ईश्वर कसम मैं सच कहती हूं, मैं नारी हूं, ईश्वर कसम मैं सच कहती हूं, मर जाना ही बेहतर है लेकर के एहसान किसी का इस दुनिया में जीने से। और खोज रहे हैं लोग जिंदगी, खोज रहे हैं लोग जिंदगी, हमारे घर घर में खोज रहे हैं लोग जिंदगी आज जहर के प्यालों में, और सोच रहे हैं कहीं मर जाए ना हम इस अमृत के पीने से। संस्कृति जो दौड़ रही है दम, हम सबको उसे बचाना है, घर घर जाकर घर घर जाकर अपने मन को और घर को इसी संस्कृति से सजाना है। सबको बांटो बोल प्यार के सखी हीरे और नगीने से, मिटा सको तो मीत मिटा दो तुम नफरत को सीने से, तुम नफरत को सीने से, तुम नफरत को सीने से। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सपना जी, आपने बहुत सारे समाधान दिए सभी को, परिवार और बच्चों के लिए। तो आपकी इस बहुत सुंदर मधुर शैली के लिए, प्रस्तुति के लिए आपका धन्यवाद। मेरा हमारे सभी वरिष्ठ वक्ताओं से अनुरोध है कि ऐसे तो दिल करता है कि आपको सुनते ही रहे, लेकिन समय की मर्यादा और सीमा, जो समय आपको दिया गया है, गागर में सागर भरते हुए हम सुनते जाएंगे आपको, तो कृपया समय का ध्यान रखें जिससे कि आगे का कार्यक्रम हम समय पर संचालित कर सकेंगे। तो आइए अब हम सुनते हैं हमारे बीच उपस्थित हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय शमिला साहिल जी। आप जो हैं लाइफ कोच हैं, को फाउंडर हैं, सीईओ हैं, लेकिन साथ साथ ये जो हमारे पहले वक्ता का एक बहुत विशिष्ट आपने देखा, लेकिन ये आपके भीतर जो मैं इनसे बात कर रही थी, आप डायरेक्टर मैकटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज के कई प्रोजेक्ट्स को लेकर आपका अनुभव है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया आपके, जिसको कहे समाधान संरक्षक के रूप में, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय है संस्कृति की संरक्षक एक महिला। मेरे लिए इसका मतलब है कि हमारी छोटी छोटी आदतें, सोच और कर्म किस तरह पूरे समाज और संस्कार को आकार देते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे संस्कार ही संस्कृति बनाते हैं और हमारी संस्कृति ही संसार बनाती है। संस्कार का अर्थ हुआ वो आदतें, वो फीलिंग्स जो हमारे विचारों और कर्मों को दिशा देते हैं, जैसे कि सत्य बोलना, संयम रखना और आत्मचिंतन करना, सभी हमारे संस्कार हैं। यदि एक व्यक्ति अंदर से शुद्ध संस्कार हो तो वो अपने जीवन में सेवा और सत्यता का 100% चीजें अपनाएगा। जैसा बीज वैसा वृक्ष, और जैसे संस्कार वैसे हमारा जीवन। जब बहुत से व्यक्ति अच्छे संस्कारों के साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो वह बनती है हमारी संस्कृति। संस्कृति सिर्फ पोशाक, डांस, गाना नहीं होती। संस्कृति होती है हम एक दूसरे को किस तरीके से बात करते हैं, हम एक दूसरे को कितना प्यार से देखते हैं, हम एक दूसरे के बड़ों को कैसे आदर देते हैं। जब एक महिला अपने परिवार में प्यार, सेवा और संयम का संस्कार लाती है तो वो परिवार एक संस्कृति का रूप बन जाता है। फिर वही संस्कृति गांव, समाज और राष्ट्र तक फैलती है। जब व्यक्ति शुद्ध है तो समाज में अच्छी संस्कृति होगी। जब समाज शुद्ध है तो राष्ट्र महाशक्ति बनेगा ही बनेगा। मैं पिछले 20 वर्षों से गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस चला रही हूं और अभी बहुत रिसेंटली बाबा के ज्ञान को सुनने लगी हूं। ब्रह्मा कुमारीज संस्था ने मुझे सिखाया कि जब महिला बिजनेस करती है तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती, वे अपने अंदर के धैर्य और आत्म संयम को बिजनेस का आधार बनाती है। ब्रह्मा कुमारीज संस्था ने मुझे सिखाया कि हर टीम मेंबर एक आत्मा है। हर आत्मा से गलतियां होती हैं, वो उसका ड्रामा है, और मेरा आत्मा का काम है कि उस पे गलतियों पे जितनी जल्दी फुल स्टॉप लगाऊं। यही मेरे बिजनेस का कर्म और कैरेक्टर बनेगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने मुझे सिखाया कि केवल दिमाग से नहीं काम होता, बल्कि वाइब्रेशंस और वैल्यू से नेतृत्व करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी संस्था जब लाखों लोगों में मैं आत्मा हूं की भावना सिखाती है तो वह एक शांत और सहयोगी संसार का निर्माण कर रही है। ब्रह्मा कुमारी की दीदियां और बहनें इस बात की जीवित उदाहरण हैं कि जब नारी को अवसर दिया जाए वह न केवल परिवार बल्कि समाज और संपूर्ण विश्व की संस्कृति की रक्षक बन सकती है। इसीलिए बहनों, यदि हम एक बेहतर संसार चाहते हैं तो शुरुआत में हमें अपने संस्कारों को बदलना होगा। संस्कार से ही बनती है संस्कृति और संस्कृति से ही बनता है ये संसार। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि हमें अंदर से मजबूत बनकर बाहर की दुनिया को बहुत सुंदर बनाना है। संस्कृति की संरक्षा करने के लिए हमें अपने संस्कारों में शांति, प्यार, सहयोगी होने का बदलाव लाना चाहिए, तो संसार खुद ब खुद ही बहुत खुश हो जाएगा और बदल जाएगा। एक महिला ही अपने बच्चों को धर्म और सच्चाई का बीज बोती है, एक महिला ही त्योहारों को मनाती है या रिश्तों को जोड़ती है, एक महिला ही घर को स्वर्ग बना सकती है। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, हमने जब यहां एक दिन दो दिन रहे तो हमने ऐसा कौन सा संकल्प लिया है कि हम अपना कौन सा संस्कार जागृत करेंगे? ये आप अपने मन में रखिए और उसको जरूर यहां से जाने के बाद सोचिए। जितना आप अपने संस्कारों के बारे में सोचेंगे, उतना ही आपकी संस्कृति परिवार की और पूरे संसार की, संसार में खुशियां ही खुशियां बनेंगी। और आखिरी में, आई एम रियली थैंकफुल टू शिव बाबा फॉर चूजिंग मी बिफोर टाइम। ही शोड मी द पाथ ऑफ ट्रूथ व्हेन आई डिडंट इवन नो हु आई ट्रूली वाज, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय टीचर शिल्पा दीदी फ्रॉम साकेत फॉर हर अनकंडीशनल लव एंड डिवाइन गाइडेंस। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद शमिला जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से संस्कार संरक्षण, बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन आपने किया, हम सभी के बीच में प्रेरणाएं दी। अभी हम आगे सुनने जा रहे हैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय राजयोगी बीके मोहन सिंगल भाई जी। आप चेयरपर्सन हैं साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग के, और इसमें विशेष रूप से आर्किटेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। आप जो हैं, अगर आपका मैं देख रही हूँ डिटेल प्रोफाइल, तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगी कि कैसे आपने बहुत लंबे समय तक ONGC के कई, वहाँ सेवारत होते हुए कई प्रोजेक्ट्स आपने चलाए, और साथ ही साथ जब आपने स्टडी पूरी की उसके बाद आप जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, तो आप कई भारत के कई राज्यों में आप सेंटर्स को खोलने के निमित्त भी बने, और साथ ही साथ जैसे कि पर्यावरण की बात आजकल चल रही है, सेव द अर्थ, कीप दिस एनवायरनमेंट ग्रीन, तो आपने जो है कई राज्यों में, लगभग 22 राज्यों में पर्यावरण जागृति तथा आपदा प्रबंधन के कई अभियानों को सफलतापूर्ण आपने आयोजन भी किया है, नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आपके इस कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए 1992 में आपको HRD मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी की तरफ से पर्यावरण श्री के अवार्ड से भी सम्मानित किया। तो हम आमंत्रित करते हैं हमारे आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी को।
ओम शांति। मंच पर विराजित सम्मानीय वक्तागण, आज के कार्यक्रम की चेयरपर्सन आदरणीय शिलू दीदी जी तथा सभा में उपस्थित आप सभी, विशेष करके बहनों तथा भाइयों, कला व संस्कृति प्रभाग की ओर से आज के ये कार्यक्रम का, जो वैसे तो ये महिला प्रभाग की तरफ से आयोजित किया गया है, लेकिन जो विषय है वो संस्कृति विषय के ऊपर बहुत ही सारगर्भित भाषण अभी चल रहे थे, मैं सुन रहा था, और बहुत ही ऐसे हृदय स्पर्शी थे, बहुत नई नई बातें भी जानने को मिली। मैं आज के विषय के ऊपर कुछ बातों के ऊपर विशेष प्रकाश डालना चाहूँगा। कल्चर जो संस्कृति की बात है, भारतीय संस्कृति वास्तव में विश्व की एक सर्वोत्तम संस्कृतियों में से एक है और उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं उसमें एक विशेष करके है वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय संस्कृति एक इस बात को बताती है कि वसुधा ही हमारी कुटुंब है, पूरी पृथ्वी ही, और पृथ्वी में तो भाई और बहनें, पुरुष और स्त्री दोनों ही आ जाते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम में अधिकतर यही समझा जाता है कि वसुधा कुटुंब है, पृथ्वी परिवार है, और मुख्य मनुष्यों को ही इसमें लिया जाता है, भाई बहनें, विभिन्न धर्म वाले, विभिन्न देश वाले, सब आपस में भाई बहने हैं। यह तो ठीक है, लेकिन वास्तव में वसुधा केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। अगर वसुधा में सबसे छोटे मेंबर को लिया जाए परिवार के, तो आप जानते हैं, समझते हैं, परिवार का छोटा सदस्य बच्चा जब पैदा होता है माँ के साथ ही लगा रहता है, वहीं से उसका पोषण होता है। तो इसी प्रकार से इस धरती माता के ऊपर भी हमारे सबसे छोटे सदस्य हैं पेड़ पौधे, जो धरती माता के साथ जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। तो सबसे पहला ख्याल तो हमें वसुधा के सबसे छोटे प्राणी यही पेड़ पौधे इनकी तरफ करना चाहिए। लेकिन विडंबना ये रही है कि सबसे ज्यादा आज उनको ही नष्ट किया जा रहा है, एक विकास के नाम पर ये जो विनाश चल रहा है इससे हम सब परिचित हैं ही। बच्चा जब छोटा से बड़ा होता है थोड़ा, तो पेट के बल चलना शुरू करता है, तो ऐसे सेकंड यंगेस्ट हैं, सांप हैं, केंचुए हैं आदि, वो प्राणी जो कि पेट के बल चलते। फिर नेक्स्ट यंगेस्ट या एल्डर फर्दर वो मेंबर्स हैं, वो हैं चौपाए, चार पैर से। जैसे बच्चा होता है छोटा, पहले दो हाथ दो पैर से चलता है, खिसकता है, और फिर उसके बाद दो पैरों से हम सब जैसे जो हैं वह चलते हैं, कार्य करते हैं। तो देखा जाए तो ये चार जो श्रेणियां हैं, वी आर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली वसुधैव कुटुंबकम के। तो असली बात हमें इस चीज को देखना है कि भारतीय संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती है, वो वसुधैव कुटुंबकम में केवल पुरुष या स्त्रियां ही नहीं है, अथवा मनुष्य ही नहीं, बल्कि ये सभी प्रकृति के भी पांच तत्व इसके अंदर आ जाते हैं। तो हमें वसुधैव कुटुंबकम जो संस्कृति की बात है, जो संस्कृति की रक्षक, विशेष आज के टॉपिक में बहनों के लिए जो बात कही गई है, वास्तव में देखा जाए तो माताएं ही इस बात की सूचना देती हैं, बताती हैं। हमें याद है बचपन से ही हम लोगों को बताया जाता था, भोजन जब करो पहले थोड़ा गाय के लिए निकालो, चींटी के लिए निकालो भोजन आदि, उसके बाद फिर खुद स्वीकार करो। तो बचपन से जो संस्कार डालने वाली वास्तव में माताएं ही होती हैं। और अभी तक भी हम कई बार आत्मनिरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि बचपन से जो संस्कार थे वो तो हुए ही, लेकिन और बड़े होकर हमें विशेष संस्कार डालने के निमित्त हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जी, जिनके साथ भी मुझे रहने का सौभाग्य मिला, और इनके साथ रह कर के बहुत सारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की बातें जानने को मिली। भारतीय संस्कृति एक बात और बताती है, जियो और जीने दो, सबके साथ विद रिस्पेक्ट, मान सम्मान के साथ जियो। सबको जीने का समान अधिकार है, ये नहीं कि अमीर को ज्यादा है गरीब को कम है अथवा बड़े को ज्यादा है छोटे को कम है, नहीं, सबको समान अधिकार है और जियो और जीने दो। इस कारण से इसके अंदर पाश्चात्य संस्कृति हमें बताती है वास्तव में इसके कुछ थोड़ा विपरीत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट है उसे ही जीने का अधिकार है, जो शक्तिशाली है। वास्तव में ये तो जंगल रूल है, जंगल में शेर शक्तिशाली होता है, राजा कहा जाता है जंगल का, तो उसे जीने का अधिकार है, वो अपने से छोटे जानवर, छोटा जानवर अपने से छोटे जानवर को खा जाता है। वास्तव में भारतीय संस्कृति की जो बात कही जाती है, घर में माता भी बताती है भाई अपने छोटे भाई बहनों से प्यार से रहो, सबको समान दृष्टि से प्रेम भाव से देखो। भारतीय संस्कृति हमें और भी ऊंचा पाठ पढ़ाती है कि यह सृष्टि एक नाटकशाला है, खेल खेलने की जगह है और हम सब इसमें खेल खेल रहे हैं और ये खेल हमारा एक वास्तव में हमें बहुत ऊंची श्रेणी तक ले जाता है कि किस प्रकार से हम सब इस नाटकशाला में खेल खेल रहे हैं और खेल खेलने के साथ साथ हमें प्रकृति जो है ये पुरुष आत्मा और ये प्रकृति, ये पुरुष और प्रकृति का खेल है और वास्तव में पुरुष और प्रकृति के इस खेल में हमें दोनों को ही ऐसा सर्वोच्च श्रेणी तक ले जाना है। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस बात को ही सिखाता है कि आत्मा पुरुष है क्योंकि पुरुषार्थ करती है और साथ में प्रकृति पांच तत्वों से बना ये शरीर है। इसे अगर और बेहद के दृष्टिकोण से देखें तो परम पुरुष परमात्मा है और यह जैसे पांच तत्वों का, तो बेहद के पांच तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, केवल भारतीय संस्कृति ही इस बात पर विशेष बल देती है और ये भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है इस बात को कि हम किस प्रकार से बाहर की प्रकृति पर अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे नियंत्रण में लाना चाहते हैं, तो हमें अपनी आंतरिक प्रकृति, क्योंकि दोनों प्रकृति ये एक दूसरे के पूरक हैं, हमारी आंतरिक प्रकृति नेचर, हमारा स्वभाव, आत्मा का संस्कार जो है वो, और बाहर की ये प्रकृति, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक। लेकिन आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, जो प्राकृतिक आपदाएं, पांच तत्व जिन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है, तो वास्तव में उसके कारण हम ही हैं, हमारा लाइफस्टाइल ही है। तो आवश्यकता आज इस बात की है कि अगर हम कल्चर की तरफ पूरा ध्यान दे करके सही रीति से चाहते हैं तो बाहर के पांच तत्वों पर तो ध्यान दे ही रहे हैं, सरकारें भी दे रही हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी दे रहे हैं सभी, लेकिन बाहर के साथ साथ हमें आंतरिक प्रकृति की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा जो हमारे आंतरिक संस्कार हैं। तो ये संस्कार और प्रकृति और बाहर की प्रकृति नेचर, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो आज हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम अगर चाहते हैं कि संस्कृति को टोटल ओवरऑल व्यू से देखें, तो उसमें मुझे एक बात याद आती है कि हम एक छोटे से, मैं चार लाइन की कविता के रूप में बनाना चाहूंगा कि बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, बता सको तो राह बताओ और पथ भटकाना मत सीखो, बदल सको तो कुपथ बदलो, राह बदलना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। अंत में भारतीय संस्कृति ने और थोड़ा सा इसमें ऐड किया है, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो, मिटा सको तो गर्व मिटाओ, और प्रेम मिटाना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो, और लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मोहन सिंघल जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी प्रेरणाएं हमें प्रस्तुत की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आमंत्रित करने जा रही हूं हमारे बीच उपस्थित माउंट आबू से श्रीमती गीता अग्रवाल जी को। आप जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी सिरोही डिस्ट्रिक्ट से, आप हमारे यहाँ माउंट आबू में जो होटल हिल्लॉक है आप उनकी ओनर भी हैं, साथ ही साथ आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं अग्रवाल समाज की। माउंट आबू के रोटरी के जो इनर व्हील है उनकी आप प्रेसिडेंट भी हैं, और अभी भी बहुत एक्टिव रूप से विशेष रूप से आपको महिलाओं के प्रति विशेष लगाव है, उनका दुख उनका कोई भी कष्ट किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है तो आप हमेशा ही तत्पर रहती हैं उनको मदद करने के लिए, और महिलाओं के कल्याण के कई प्रोजेक्ट्स के साथ भी आप जुड़ी हुई हैं, और विशेष रूप से पिछले दो वर्षों से नशा मुक्ति अभियान में ब्रह्मा कुमारीज के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी आप जुड़ी हुई हैं। आप जो हैं इस समय महिला संयोजक भारत विकास परिषद सिरोही से भी आप एक हमारी सम्मानित महिला के रूप में नियुक्त हैं। तो गीता जी का तो वास्तव में परिचय उनका जीवन ही है, तो मैं अनुरोध करूंगी कि आप भी अपना अनुभव शेयर करें। आदरणीय गीता जी।
ओम शांति। आदरणीय दादी जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन सिलू दीदी, सम्मानित मंच, यहाँ पे जो आए हुए श्रोतागण, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार। नारी नारायणी है, नारी ईश्वर की प्रतिनिधि है, नारी एक सिर्फ परिवार की आत्मा नहीं है, पूरे समाज की आत्मा है। नारी ने ही भाषा पहनावा सभ्यता संस्कार सच्चाई और शिक्षा के माध्यम से संस्कृति को जीवित रखा है। ईच वुमन हैज गॉट इनक्रेडिबल पोटेंशियल, उनमें बहुत सारी शक्तियां हैं, जबरदस्त शक्तियां हैं। अगर वो अपने अंदर की एक शक्ति को भी निकाल करके संरक्षक बन जाती है तो दुनिया में बहुत कम प्रॉब्लम्स रहेंगी। वुमन सेवियर ऑफ कल्चर, वुमन एम्पावरमेंट जो आपने बताया गया है, जो उनके कारण जिस तरह से 100% अपन को इसका सफलता लेनी है, तो हर लेडी जैसे कि माउंट आबू का जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, उनकी 12,000 संस्थाएं देश में विदेश में वर्ल्ड में फैली हुई है, वो चलाने वाली कौन है? महिलाएं ही है। क्योंकि कारण क्या है कि उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन जी रही है। आध्यात्मिकता का मतलब होता है भौतिकता से परे रह करके अपने आप में अंदर झांक करके देश का जीवन का अर्थ और उद्देश्य को देखना और उस हिसाब से जीवन को चलाना। अगर जो एक घर में एक महिला हर रोज मेडिटेशन करती है, जैसे ये ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट की तरह खुद मेडिटेशन करती है, तो पूरा बॉडी का जो हीलिंग होता है, पूरी बॉडी में जो वाइब्रेशंस आते हैं, पूरी बॉडी में जो सत्यता का प्रमाणित होता है, वही बच्चा सीखेगा। हम सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन लीड द नेशन, कि जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। आपका बच्चा बहुत अच्छा मेडिटेशन करने के बाद में बहुत ज्यादा परसेंटेज ला करके अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। जो बच्चे आजकल ड्रग्स अल्कोहल लेते हैं वो नहीं लेंगे, जो देश में रेप के केसेस होते हैं वो भी बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि माँ अपने बच्चे को सिखाएगी कि सभी महिलाएं हमारी बराबर हैं, है नहीं? तो अगर जो ये माँ सिखाती है तो ही वो लड़का सीखता है, समझता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है महिलाएं क्यों नहीं सिखाती हैं। दूसरा मैं कहूंगी कि अगर संरक्षक बनना है तो सस्ता से गौ संरक्षण वो वाला अपनाइए। आजकल हम देखते हैं कि हमारा जो सिटी है, टाउन है, गांव है, उसमें बहुत कचरा गार्बेज पड़ा रहता है। इसमें हम लेडीज जो हैं वो भी हमारी भागीदार हैं। वो लोग कहेंगे कि ये प्रशासन का काम है, प्रशासन का तो है ही, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन हम घर घर सेग्रीगेटेड कचरे को रख करके अलग अलग जो कचरे को वेट और ड्राई करके जो हम गाड़ी तक पहुंचाते हैं तो वो कचरा गांव में नहीं पड़ा रहेगा, घर के बाहर नहीं फेंका जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिक प्रशासन के थ्रू डंपिंग यार्ड में जाएगा, रीयूज होगा, रिसाइकल हो गया। क्योंकि करना इसलिए आवश्यक है कि हम जानते हैं कि गाय है एक ही ऐसा प्राणी है कि वो सुबह से मतलब जीवन पर्यंत सब कुछ देता है, वो दूध, घी, दही, पनीर, वो सब कुछ लास्ट में जो देगी उसके ऊर्जा भी देता है, वो जो मकान बनता है उसमें भी वो उसका योगदान होता है। लेकिन जो इस तरह से प्लास्टिक गार्बेज कचरा खाती हैं, उसके कारण जो गायों का दूध डेयरी में जाता है वो डेयरी का दूध से हमारे बच्चे कैंसरस दूध पी रहे हैं, हम लोग खुद भी मिठाइयां खा रहे हैं वो कैंसरस मिठाइयां होती है और काफी कैंसर की बीमारियां फैल रही है। अभी मैंने जो ये बीकानेर क्लब की मीटिंग से जाने पर देखा कि जो नागौर जिले में एक कृष्णा गौशाला है, वो कृष्णा गौशाला में 2500 गायें हैं, जिसमें 400 गायें ऐसी थी कि जो हाईवे पे घूमते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी टांग टूट गई थी, कई गायें जो उनका आईसीयू वार्ड था उसमें उनका ऑपरेशन हो रहा था, कई गायें जो थी उनके पे तेजाब फेंका गया था, 50 से 60 गायों पे लकड़ियों का वो था। हम तो कहें हमारी महिलाओं में जागृति लाइए कि ये नहीं होना चाहिए, हमको खुद को भी म्यूनिसिपालिटी पे जाना चाहिए, हमको भी नियमों का पालन करा करके ये जो रोड पे नहीं घूमनी चाहिए, जो जंगल में बकरी घास खा सकती है, पत्ता खा सकती, तो गाय क्यों नहीं खा सकती, गाय को खिलाए, उनके ओनर को बताया जाए। अरे ये इस तरह से हम संरक्षक बन सकते हैं। संरक्षक बनने के लिए कोई ज्यादा काम नहीं करना है, प्रैक्टिकल वे में जाइए। आप लोगों ने सभी ने बताया, दादी जी ने बताया कि जो प्राचीन जो कल्चर था उसको अपनाया जाना, डॉक्टर सपना जी ने बताया कि जो लड़कियां थोड़ी अल्कोहल, जो कपड़े सही नहीं पहनना, जिसके कारण देश में वो हो रहा है, आप जब भी सीओ मैडम ने बताया वो सबका पालन करा जाए तो हमारा जो देश है उसमें संस्कृति की कहीं कमी नहीं है। संस्कृति को अपनाने के लिए प्रैक्टिकल वे में डे टू डे हम महिलाओं को जागरूक होकर के गायों की स्ट्रेंथ ब्लेसिंग्स हम लेंगे तो हमारे बच्चे भी बहुत जबरदस्त आगे बढ़ेंगे। यही कह के मैं समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती गीता अग्रवाल जी आपके विचारों के लिए। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम सुनने जा रहे हैं हमारे बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय श्रीमती नेहा तिवारी जी। आप सीईओ और को फाउंडर हैं समराव टेक्नोलॉजी रायपुर से हैं आप, और तालियां बज रही हैं आपके लिए, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। आप सीईओ को फाउंडर के साथ साथ आप काफ़ी सक्रिय हैं, आपकी जो स्टडी है NIT रायपुर और IIT मुंबई से आपने डिग्री हासिल की, उसके बाद आपने जो है विशेष रूप से डीन के पद पर भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, और आपने एक और विशेषता है कि इसके साथ साथ आप फॉर्मर स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर भी हैं तो नेशनल कैंप पार्टिसिपेशन में आप एक ऑलराउंडर एक्सलेंस पर्सनैलिटी हैं। तो आइए हम सुनते हैं मिसेज नेहा तिवारी जी।
मंचा सिंह, महान विभूतियां चैतन्य देवियों को सादर प्रणाम करते हुए सभा में उपस्थित विदुषी बहनों व भाइयों का अभिवादन करते हुए स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे कि डॉक्टर सपना जी ने कहा, नारी का स्वरूप शक्ति रूपेण, स्नेह रूपेण, उसी प्रकार मैं एक और चीज संस्कार रूपेण ऐड करके सेम बोलना चाहूंगी, या देवी सर्वभूतेषु संस्कार रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। यह मंत्र देवी दुर्गा को समर्पित है और इसका अर्थ है कि हे देवी, जो सभी प्राणियों में संस्कार के रूप में स्थित है, उनको मेरा नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। अगर कोई पूछे कि संस्कृति कहाँ रहती है, अगर कोई पूछे कि संस्कृति कहाँ रहती है, तो जवाब होगा माँ की गोद में, दादी की कहानियों में, बहन की हंसी में और उस नारी की थाल में जो बिना नाम लिए परंपराओं को जीती है, जो यहाँ मौजूद हैं, जिनके बीच हम यहाँ बैठे हैं। वी ऑफन से कल्चर इज द सोल ऑफ सिविलाइजेशन, बट आई विल गो अ स्टेप फर्दर एंड आई विल से दैट वुमेन इज द सोल ऑफ दैट सिविलाइजेशन। इसका अर्थ है संस्कृति सभ्यता की आत्मा होती है, लेकिन महिलाएं उस संस्कृति की आत्मा होती है। महिलाएं केवल घर या परिवार तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे संस्कृति, उसकी रीति रिवाज, उसकी परंपराएं, नैतिक मूल्य, कला, भाषा और जीवन शैलियां की संवाहक होती हैं। इसका मतलब है कि जैसे आत्मा शरीर को जीवंत बनाती है, वैसे ही महिलाएं संस्कार संस्कृति को जीवंत बनाए रखती हैं। वे संस्कार शिक्षा सहनशीलता स्नेह करुणा और मानवीय मूल्यों को संजोकर समाज को नई दिशा देती हैं। सोचिए जरा एक मिनट के लिए, जरा सोचिए आप कि आपकी सबसे पहली प्रार्थना किसने सिखाई थी, पहली बार दिया जलाना किसने सिखाया था, व्रत रखना किसने बताया था, पहली कहानी हमको किसने सुनाई थी, पहली बार ओम शांति बोलना किसने बताया था। हम सबका आंसर होगा हमारी माँ या हमारी दादी ने। एम आई करेक्ट? आई बिलीव एज अ वुमन आई एम ट्रेन टू कैरी बोथ वैल्यूज एंड वेलोसिटी। दैट मीन्स टू रन अ फैमिली इट इज द वैल्यू ऑफ वुमन विच इज नेसेसरी एंड एट द सेम टाइम वॉट वेलोसिटी शी इज केयरिंग शी इज टेकिंग इट। आई हैव टेकन वेलोसिटी नॉट द स्पीड बिकॉज द वेलोसिटी हैव द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। हियर द डायरेक्शन इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो टू रन द फैमिली द सोसाइटी ऑटोमेटिकली रन्स, द नेशन ऑटोमेटिकली रन्स एंड इट्स द पावर इट्स द पाथ फॉर आत्मनिर्भर भारत इट्स द पाथ फॉर वसुदेव कुटुंबकम। वी ऑल नो दैट मैन एंड वुमन आर स्ट्रक्चरली मेड डिफरेंट बाय द नेचर। सो मैन इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द वुमेन इन द फिजिकल वर्ल्ड। आदमी इस भौतिकी संसार में महिला की रक्षा करता है, बट आध्यात्मिक संस्कार में एक नारी ही पुरुष की रक्षा करती है। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इट इज द ओनली वुमेन हु सेव्स द मैन। इसलिए हमने देखा कि आदमी कितना भी कर ले, वह एक औरत की पूजा ही होती है जो उसे बचा लेती है। हमने सत्यवान और सावित्री की घटना सुनी है कि सावित्री की आस्था में सत्यवान को वापस जीवन दान दिया। हम सब जानते हैं वैल्यूज संस्कार हमारी सोसाइटी में मातृशक्ति द्वारा ही विकसित की गई है, क्योंकि नारी में ही नर समाया हुआ है, वुमेन में ही मेन है। तो वुमेन इज द कॉम्बिनेशन इट्स द अर्ध नारीश्वर जो अपने आप को तपाकर पूरे की पूरी सोसाइटी का उद्धार करती है। मैं लास्ट में ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए कुछ लाइन कहना चाहूंगी। आंधी जब चलती है आकाश बदल देती है, बिजली जब चमकती है दिन रात बदल देती है, धरती जब सरकती है सीमांत बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है इतिहास बदल देती है।
बहुत बहुत धन्यवाद नेहा तिवारी जी। तो जब आप कुछ पंक्तियां कह रही थी तो मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ गई। कहते हैं कि आंधी के दौर में क्षमा भी बुझ सकती है, तूफान में किश्तियों के रुख भी पलट सकते हैं। अगर महिलाओं के इतने इरादे नेक और पक्के हैं तो समय का दौर बदल सकते हैं, समय का दौर बदल सकते हैं। और समय का दौर बदलने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हम जो संकल्प यहाँ लेंगे, जाने के बाद उसे कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए शुरुआत में ही कहा कि ये सत्र समापन सत्र नहीं है, लेकिन एक नई शुरुआत करने का, ये अवेकनिंग टू न्यू वे ऑफ हैप्पी लिविंग, सेवियर बनकर संरक्षण देना न केवल परिवार को लेकिन आसपास के माहौल को देने की भी एक जिम्मेवारी और संकल्प का ये क्षण है। मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच अति सम्माननीय और वरिष्ठ हमारी आज के कार्यक्रम की चेयरपर्सन हमारी आदरणीय शीलू दीदी जी। आप वाइस चेयरपर्सन है एजुकेशन विंग ब्रह्मा कुमारीज। दीदी का बहुत ही हम कहें कि उनका परिचय गागर में सागर की तरह करना होगा। कैसे सागर को गागर में भरें, क्योंकि बहुत अनुभव, और मैं इस बात को शेयर करते हुए भी सम्मानित फील कर रही हूं कि आप उन बहनों में से हैं जो कि हमारे शुरुआत में फाउंडर के साथ रहे, जैसे हमारी आदरणीय चक्रधारी बहन, हमारी शील बहन। तो ये बहनों का ऐसा ग्रुप था कि जिन्होंने शुरू से ही कुछ न कुछ उनके साथ रह के प्रेरणा प्राप्त की। आप जो हैं, एक और विशेष बात है कि हमारे राजयोग शिविरों की जो कैंप्स की शुरुआत हुई, उसका पूरा ही शुरुआत से जो हम कहें कि किस प्रकार से उसे इस राजयोग शिविर को, इस मेडिटेशन को सरल भाषा में पहुंचाने का भी आपको श्रेय जाता है। आप उसकी डायरेक्टर भी हैं राजयोग शिविर जो भी हमारे चलते हैं, और टीवी चैनल्स में जो ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम शुरुआत जो हुई उसमें भी आप जी टीवी और सोनी टीवी पर भी आपकी शुरुआत में जो भी वक्तव्य आए उन्हें, उनकी वजह से आप बहुत पॉपुलर हो गई। आपने जो है मुंबई विश्वविद्यालय से 1969 में विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद बहुत ही कम आयु में, आप 21 वर्ष की आयु में ही आपने अपना जीवन मानवता को समर्पित किया। और उसके बाद 1976 में आप मुख्यालय माउंट आबू में स्थायी रूप से यहाँ रहकर देश विदेश में सेवा कर रही हैं, और आप पांचों महाद्वीपों में 70 से भी अधिक देशों में आपने भ्रमण किया है और ब्रह्मा कुमारी इसको रिप्रेजेंट किया है। उसके लिए आपको कई सम्मान प्राप्त हैं, आपको वुमेन ऑफ एक्सलेंस का भी अवार्ड मिला है। और दीदी बहुत ही नम्र हैं, और आप स्टार्टिंग में जो अनुवादक के रूप में जो हमारे कार्यक्रम विदेशी यहाँ पर आते रहे तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की भी आपकी मास्टरी है, और आपकी वाणी में तो स्वयं सरस्वती ही बैठते हैं। तो अभी मैं आदरणीय शीलू दीदी जी को अनुरोध करूंगी। धन्यवाद।
ओम शांति। मैं निवेदन करूंगी, सभी मेरे बात कहेंगे, ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के अति प्रिय संतानों, मेरी प्यारी बहनों तथा भाइयों, बहुत सुंदर यह कार्यक्रम चला। नारी शक्ति कितनी महान है, सभी बहनों ने बहुत सुंदर बातें इस पर कही। जरूर है कि नारी एक धुरी है। जब नारी का सम्मान है, नारी ऊंची है, तो सारा समाज ऊंच हो जाता है। नारी अगर अपने चरित्र में गिरती है तो समाज भी गिरता है। नारी वो धुरी है, इसीलिए नारी के लिए ही गायन है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान है, नारी का पूजन है, वहाँ देवताओं का वास है। बल शारीरिक दृष्टि से हम कहेंगे कि नारी कमजोर है, लेकिन मनोबल, आत्मबल नारी का बहुत ऊंचा है। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो घर को नरक बना दे। अवश्य हम ये मानेंगे कि इस समय पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष का वर्चस्व है, और हमने ये भी देखा कि इस पुरुष प्रधान समाज में ऐसा भी समय था जब नारी को समाज में कोई स्थान नहीं था। नारी केवल चार दीवारों में ही रहती थी, कोई उन्हें सामाजिक व्यवस्था में भाग नहीं ले पाती थी। परंतु मैं खुशखबरी बताऊंगी कि जब से शिव परमात्मा ने ब्रह्मा पिता के माध्यम द्वारा इस संस्था की स्थापना की, तो सर्वप्रथम नारी को ही आगे रखा। नारी ही शक्ति है, नारी ही स्वर्ग का द्वार है, यही बाबा ने कहा। और सचमुच आप देखेंगे कि जैसे ये संस्था स्थापन हुई 1936 में, शिव परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा नारी को आगे रखा, उसी समय हमारे समाज में भी यह विचार बहुत आगे बढ़ा कि नारी को आगे करना है। राजा राम मोहन रॉय, लाला लाजपत राय, ये बहुत बड़े समाज सेवी थे जिन्होंने नारी का संरक्षण किया, नारी को आगे बढ़ाया। और आज हम देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री भी कैसे नारी को आगे बढ़ा रहे हैं। 33% आरक्षण नारी को दिया है, और समाज भी ये मान रही है कि नारी के आगे बढ़ने से कैसे समाज आगे बढ़ सकता है। हमारे पास सन्यासी, संत, महात्माएं वो आते हैं और सचमुच चकित हो जाते हैं कि ये नारियां कैसे इस संस्था को आगे बढ़ा रही है। कई यहाँ तक भी कहते हैं कि आपकी संस्था कैसे आगे बढ़ रही है, इसका मूल कारण नारी है, आपने बहनों को आगे रखा है। और आप देखेंगे हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भाई भी है, बहनें भी है, ऐसे नहीं कि भाई नहीं है। कईयों के अंदर ये गलत फहमी है कि यहाँ तो केवल स्त्रियाँ ही हैं, ऐसी बात नहीं है, भाई और बहनें दोनों हैं, क्योंकि दोनों ही आत्माएं हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ बहनों को आगे रखा गया है। जितनी भी हमारी दादियां हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी आगे थी, हालांकि कोई उन्होंने उसका एजुकेशन नहीं लिया था। हैदराबाद सिंध में वो आई और कुछ खास पढ़ी हुई भी नहीं थी, उस समय नारी को इतना पढ़ाया भी नहीं जाता था। हमारी बड़ी दीदी थी मनमोहिनी दीदी, उन्होंने वो तो स्कूल भी नहीं गई थी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर वन थी। दादी प्रकाशमणि जी बिल्कुल बिल्कुल ताली बजाने योग्य है उनके लिए। दादी प्रकाशमणि जी भी जो ब्रह्मा बाबा के बाद 38 वर्षों तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रही, वो भी केवल 10वीं पास ही थी। तो आप देखेंगे जितनी भी हमारी दादियां जिन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला और देश और विदेश में कैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया, वो विद्या कोई इतनी पढ़ी हुई नहीं थी लेकिन भगवान ने उनको इतना ऊंचा स्थान दिया और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका बनी। आज भी हम उन दादियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए भी वो प्रेरणा स्रोत थी। बाबा ने मम्मा को आगे रखा, मम्मा तो एक कुमारी थी, केवल 17 साल की थी लेकिन उनको माँ का टाइटल दिया, जगदम्बा सरस्वती का टाइटल दिया, दुर्गा अम्बा का टाइटल दिया। तो ये जितनी भी देवियाँ दिखाते हैं ये सब शिव की शक्तियाँ दिखाते हैं और कैसे शिव परमात्मा ने बहनों को आगे किया। और जब बहनें आगे आई तो देखो ये संस्था कितनी आगे बढ़ गई। हमारे सन्यासी महात्माएं वो भी यही कहते हैं, आपकी संस्था जो इतनी आगे बढ़ रही है इसका मूल कारण ये नारी है, आपने बहनों को आगे किया है। तो आप सोचें कि संत महात्माएं भी यहाँ आकर के ना बहनों की महिमा गाते हैं। तो ये शिव परमात्मा ने आदेश दिया बहनों को आगे रखो। प्रजापिता ब्रह्मा ने अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी 8 बहनों के नाम पर कर दी और उन्हीं बहनों ने इस संस्था को आगे बढ़ाया। तो आज हम देख रहे हैं नारी शक्ति की कमाल। तो हम ये कह सकते हैं द लार्जेस्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन रन बाय वुमेन ये संस्था है। तो नारी में क्या नहीं गुण हैं, इन गुणों का वर्णन तो हमारी बहनों ने बहुत सुंदर रूप से किया, भाइयों ने भी किया। तो इन गुणों को हम कैसे उजागर करें? गुण तो बहुत है, शक्तियां तो बहुत है, शिव शक्ति गाई हुई है। यहाँ तक कहा गया है कि शिव भी शक्ति के बिना शव है। तो ये जो कहावत है कि शिव भी शक्ति के बिना शव है, इसका क्या मतलब है कि नारी कितनी ऊंची है। परंतु क्या नारी अपने महानता को इतना समझती है? आज हम नारी को जब देखते हैं तो वो शीलता, वो गुण कहाँ कहाँ लुप्त होते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नारी ये भूल चुकी है कि वही संस्कृति की संरक्षक है। और ये भूलने के कारण हम देख रहे हैं समाज कितना पतन की ओर जा रहा है। परंतु नारी अगर संयमित है, नारी अगर अपने असूलों को पूरा पहचाने तो नर कभी भी कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता है। अगर आज हम समाज में ये भी देख रहे हैं रेप हो रहे हैं, क्यों रेप हो रहे हैं, मास रेप कितना बुरा है ये आज का इस समाज इस रूप में, परंतु इसका मूल कारण हम पुरुष को दोष न दें, हम नारी को ही दोष देंगे। बिल्कुल नारी को ही दोष देंगे। क्यों नहीं, क्यों दोष देंगे? क्योंकि नारी अगर संयम में है, नारी अगर अपने श्रेष्ठ मर्यादाओं में है तो नर को मजाल है कि कोई हाथ भी लगा सके। तो इसीलिए शिव बाबा ने हम बहनों को इस संस्था में इतना मर्यादित रखा है ताकि इस मर्यादा के अंदर हम रहें। पवित्रता इस संस्था का मूल आधार है। पवित्रता के आधार से कैसे वो पवित्रता जिसको हम प्यूरिटी कहते हैं, वो प्यूरिटी ही रॉयल्टी है, प्यूरिटी ही रियलिटी है। प्यूरिटी केवल बाहर की शुद्धि नहीं, लेकिन पवित्रता ये अंतर की भी शुद्धि है, विचारों की शुद्धि। क्योंकि संस्कार कैसे बनते हैं, हम कहते हैं आत्मा में तीन फैकल्टीज है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम सोचना है, बुद्धि का काम निर्णय करना है, और संस्कार अर्थात जो भी आत्मा कर्म करती है वो कर्म संस्कार के रूप में आत्मा में ही भरते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, इस संसार की कोई वस्तु नहीं ले जाता, धन दौलत मकान जमीन जायदाद ये सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन क्या ले जाती है आत्मा, केवल अपने संस्कार। और वो संस्कार भी कैसे बनते हैं, जो जीवन में हमने कर्म किए। तो कहा जाता है कि मनुष्य जब मरता है तो बाकी तो सब रह जाता उनका, लेकिन वो आत्मा संस्कार लेकर के गई, जो कर्म उसने जीवन में किए। और फिर आत्मा जब जन्म लेती है तो कहा जाता है बच्चा पैदा होता है तो अपना भाग्य लेकर आता है। तो बच्चा भाग्य लेकर आता है, लेकिन वो भाग्य किस आधार पर बना, पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर, पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर। तो अगर हम अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हम कर्म श्रेष्ठ करें, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है और साधारण इंसान कर्मों की गति नहीं समझता है। इसीलिए उसके मन में ये प्रश्न उठते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। तो क्यों क्या कैसे के जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इनका मूल कारण हमारे कर्म है। तो हम दूसरों को दोष न दें कि इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ। हम कई बार अपने स्ट्रेस का भी कारण कोई और बताते हैं, इस व्यक्ति के कारण मुझे इतना तनाव हो गया, अगर ये व्यक्ति ऐसे नहीं करता होता तो मुझे ऐसा तनाव नहीं होता। हम कहते हैं नहीं, कोई किसी को दोष नहीं दे सकता है, हमारे कर्मों का कारण मैं खुद हूं। इसीलिए हम दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। हम एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो तीन उंगली खुद पर उठाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एक गुना दोषी है तो हम तीन गुना दोषी है। तो आवश्यकता है कि हम खुद को बदलें। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम ये कहते हैं दुनिया बदले, ये बदले, वो बदले, वो बदले, लेकिन हम बदले। मैं बदल कर पहले अपने परिवार को बदल सकती हूँ, परिवार को बदलने से समाज को बदल सकती हूँ, और समाज को बदलने से देश को बदल सकती हूँ, और देश को बदलने से पूरा संसार को बदल सकती हूँ। ये नारी के हाथ में है। हम यही कहेंगे संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। अवश्य संस्कार से संस्कृति आती है, संस्कृति के अनुसार हमारे संस्कार बनते हैं, लेकिन संस्कार से संसार बनता है, ये हम ना भूलें। तो हम कैसा समाज चाहते हैं, हम वो समाज चाहते हैं जिस समाज में प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, दया हो, भाईचारा हो, एक दो के प्रति सम्मान हो, यही हम समाज चाहते हैं। लेकिन आज वो समाज क्यों नहीं बन पा रहा है, घर घर में हम देख रहे हैं महाभारत चल रहा है, घर घर में रामायण और महाभारत हम पढ़ते तो हैं, लेकिन आज परिवार परिवार में ये महाभारत चल रहा है, दो भाइयों का आपस में नहीं बनता, मानो धन ही सब कुछ हो चुका है, भगवान बन गया है धन, धन के पीछे एक दो की हत्या करने लिए तैयार हो चुके हैं, जिसको हम आज कहेंगे घोर कलयुग आ गया है। पर यही भारत था जो सतयुग कहलाता था, जहाँ नर और नारी श्री लक्ष्मी नारायण कहलाते थे, मानव देव था। तभी तो भारत की संस्कृति कितनी महान है। तो भारत की संस्कृति महान किस आधार पर बनी, जब मानव देव था, दैवी लक्षण थे हमारे अंदर, लेकिन आज वो मानव देव के बदले दानव बन गया है। तो अब परमात्मा फिर से इस भारत को खास और सारे विश्व को आम फिर से कलयुग से सतयुग बनाने आए हैं, नर को नारायण बनाने आए हैं, नारी को लक्ष्मी बनाने आए हैं, और उसमें सबसे पहले नारी को बदलना है। तो जो नारी धुरी है, जिसके उत्थान से संसार का उत्थान होता है, जिसके पतन से संसार का पतन होता है, अगर हम सब नारियां ये मिल करके ये प्रण ले, प्रतिज्ञा करें कि हम बदलेंगे और अब हमारे परिवर्तन से हम अपने परिवार को बदलेंगे, परिवार से समाज को बदलेंगे, समाज से देश को बदलेंगे और देश से विश्व को बदलेंगे। आज अगर इस महिला जो आपका यहाँ पर जो सम्मेलन हो रहा है, इतनी सारी बातें महिलाओं ने सुनाई भी और सुनी भी, तो ये प्रतिज्ञा जरूर करके जाएंगे कि हम इस समाज को बदलेंगे। तैयार है सब बदलने के लिए? जो समझते हम तैयार है हाथ उठाएं। तो कैसे बदलेंगे? पहले खुद को बदलेंगे, अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि मैं कैसी हूँ, क्या मेरे अंदर वो सच्चा प्रेम है, क्या मेरे अंदर वो शांति है, और अगर नहीं है तो हम कैसे धारण करेंगे, परमात्मा से वो शक्ति लेंगे, परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ेंगे और वो शक्ति ईश्वर से लेकर के खुद में परिवर्तन लेंगे करेंगे। तो आज आप सभी ये संकल्प करें कि हम अपने आप को बदलेंगे, घर जाकर अपने आप में वो परिवर्तन आपका परिवार देखे कि मेरी माँ तो बदल गई, मेरी बहू तो बदल गई। तो जब बेटी हूँ, माँ बेटी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, सास हूँ, बहू हूँ, तो ये मैं अगर बदल जाऊंगी तो मेरा परिवार पूरा बदल जाएगा और ये समाज बदल जाएगा और हम फिर से भारत खास और दुनिया आम को हम सतयुगी दुनिया बना सकेंगे। ये प्रतिज्ञा यहाँ से जरूर करके जाना, यही हमारी आप सबसे अपेक्षा है, यही हमारी आप सबसे शुभकामनाएं हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना शांतिपूर्वक ये 3 दिन यहाँ सुना, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नज़दीक से देखा कैसे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। यहाँ पर कोई बॉसिज्म नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम सब कैसे मिलकर चलते हैं। जहाँ कोई कहते हैं दो नारी भी मिलकर नहीं चल सकती, यहाँ इतनी बहनें सब मिलकर चलती है, हजारों बहनें हमारी समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है। तो लोग पूछते हैं आपका ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कोई बॉस नहीं है, कोई किसी को रोग नहीं चलाता, ये कैसे सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कैसे कर रहे हैं? तो हम कहते हैं यहाँ सहयोग की शक्ति है, बहुत बड़ा सहयोग है, जिस सहयोग में हम यही कहते कैसे ये सब सहयोग है, क्योंकि यहाँ यही कहा जाता है एवरी टास्क इज अ डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ वर्क है, यहाँ केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क नहीं है, डिग्निटी ऑफ वर्क है, क्योंकि ये कार्य भगवान का कार्य है। तो जब भगवान का कार्य है तो ये ईश्वरीय कार्य तो कितना महान है। चाहे कोई भाषण करे, चाहे कोई बर्तन मांझे, वो महान कार्य है। और दूसरा कारण है कि मुझे बदलना है, ये सबको शिक्षा दी जाती है। और इसी के आधार से हम सब एक जुट होकर के रहते हैं, एक सही मार्गदर्शन हम दूसरों को देते हैं, जिसके आधार से ये संस्था इतनी आगे बढ़ रही है। तो आप सबने ये प्यार से सुना और समझा, अनुभव किया, अवश्य आप इसमें और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, अपने परिवार को सचमुच सच्चा ग्रस्त आश्रम बनाएंगे और इस समाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आदरणीय राजयोगिनी शीलू बहन का भी जोर से तालियां बजाकर हम धन्यवाद करेंगे। और जो आप खास सभी से प्रतिज्ञा करवा रहे थे, मैं उनके भावों को देख रही थी, तो उन्होंने कहा प्रतिज्ञा करेंगे, तो हम सभी बहनें भी राइट हैंड ऊपर करके 3 बार बोलेंगे, हम बदलेंगे समाज बदलेगा, हम बदलेंगे समाज बदलेगा, हम बदलेंगे समाज बदलेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, त्रम। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय भूमिसन, आदरणीय चक्रधारी बहन हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको पहले दिन से ही वो बहुत सुंदर प्रेरणाएं दे रही हैं अपने अनुभवों के द्वारा। उनका जीवन ही हम कहें कि वास्तव में एक जीती जागती मिसाल है कि कैसे उन्होंने कितनी लाखों महिलाओं को प्रेरणा दी है। अभी हमारे बीच उपस्थित है, हम उनसे फिर से उनके मुखारविंद से सुनेंगे। हम सभी तालियां बजा के आदरणीय दीदी जी का स्वागत करें, सुनेंगे।
ओम शांति। मुझे भी प्रेरणा है कि मैं भी 2 शब्द आपके सामने अवश्य कुछ कह दूं, क्योंकि हमें इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने ये इशारा दिया कि भारत की वो संस्कृति जहाँ यही गायन था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो नारी जो पूज्य थी तभी ये भारत देवी और देवताओं का स्थान था। उस समय जबकि तामसिकता का बहुत जोर था और सिंध प्रांत एक ऐसा प्रांत उस समय बन चुका था जिन भाइयों की पत्नियां भारत में भी थी और एक एक विदेश में भी थी, व्यापार करने के लिए विदेशों में जाते और भारत में मौज मनाने पुनः आ जाते। मीट शराब ये सब भोजन में आ चुका था। तो परमात्मा ने उस समय यही नारा दिया कि देवों की धरती भारत आज किस दशा में पहुंच चुकी है, जागो, पहचानो अपनी संस्कृति को। और विकारों के गर्त में घिरते हुए इस संसार को थामो। हे माताओं, क्या तुम्हें अपने लालों का दुख देखकर, अशांति देखकर, मर्यादा विहीन होते देखकर अंदर से रहम और तरस नहीं आता? और जिनको ये आवाज, करुणा भरे शब्द हृदय को जाकर स्पर्श किए, उन्होंने कदम उठाया इस देश को विकृतियों और विकारों से मुक्त करके हम अपने इस भारत देश को पुनः स्वर्ग भूमि देव भूमि बनाएंगे। आप सोचिए वो समय जब पुरुष प्रधान देश था और जिस समय रूढ़िवादिता के आधार से मनुष्य चल रहा था और नारी की कोई कदर नहीं थी, ऐसे समय पर महिलाओं ने कदम उठाया। कितना उनको सहन करना पड़ा होगा, कितना सामना करना पड़ा होगा, लेकिन एक शक्ति दल तैयार हुआ। तो मैं आपको यही कहने के लिए उपस्थित हुई हूं कि क्या आज हमको ये दिखाई नहीं दे रहा किस प्रकार ऊंची संस्कृति का भारत आज कैसे गिरावट की तरफ जा रहा है? क्या हम इस गिरावट को देखकर केवल यही कहते रहें कि दुनिया बड़ी बिगड़ रही है, बच्चे बड़े बिगड़ रहे हैं, आहार आचार विचार बिगड़ रहे हैं, लेकिन इसे कौन सुधारेगा? जब भारत हमारा परतंत्र था, उसे स्वतंत्र करने का एक नारा बापू जी ने बुलंद किया, कितनी सेना बनी और कितना ने सर्वस्व त्याग करके इस भारत को विदेशी रूल से स्वतंत्र कराया। और आज सचमुच मानव के जीवन में विकारों और विकृतियों रूपी शत्रुओं ने अपना डेरा डाल लिया है और चारों तरफ विकारों का साम्राज्य है। और यही कहते क्या करें, सब करते हम भी कर रहे हैं। अगर बापू जी भी यही कहते सब अधीन हैं, अगर मैं भी अधीन हूं तो क्या हुआ, लेकिन उनके मन में ये हित किया कि परतंत्रता जीवन नहीं है, स्वतंत्रता ही जीवन है। तो आज ईश्वर भी हम बच्चों को यह आवाज लगा के कहता है, जागो, सोए हुओं को जगाओ, अपनी प्राचीन संस्कृति को पुनः धरती पर लाने के लिए कदम आगे बढ़ाओ और इसका प्रारंभ अपने जीवन से करो। अवश्य है आप जब अपने जीवन में दिव्यता और श्रेष्ठता लाएंगे तो आपके रास्ते में बाधा बहुत आएंगी। जिसका मैं एक एग्जाम्पल सुना रही थी, मैं कलकत्ता में थी, एक माता पिता एक पुत्र के हमारे पास आए। बच्चा 22 वर्ष का था। माँ बाप ने कहा हम केवल मात्र ये आपसे फरियाद करने आए हैं कि हमारे बेटे को यहाँ आना बंद करो, ये यहाँ आता है हमको अच्छा नहीं लगता है। हमने उनको कहा अभी आप आए, किसी ने आपके रास्ते को बंद किया कि आप नहीं जा सकते? ईश्वर का रास्ता सबके लिए खुला है। हाँ, अगर आपका पुत्र यहाँ आता है और उसके जीवन में कोई डिफेक्ट्स आ चुके हैं, कमी और कमजोरियां आ चुकी हैं, वे हमको बताइए, हम अवश्य उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा बहुत कमियां आ चुकी हैं, हम हर 15 दिन के बाद होटल में खाना खाते हैं, ये हमारे साथ अब होटल में खाना खाने नहीं जाता, एक कमजोरी आ गई। दूसरी कमजोरी, हर मास में अगर हम भी पीते हैं तो बच्चे को भी थोड़ा सा पिलाते हैं ताकि इसकी भी आदत बनी रहे, लेकिन आज ये पीने के लिए मना करता है। सुबह 4 बजे उठ जाता है और मेडिटेशन में बैठता है, ना पूरी नींद स्वयं करता है ना हमें करने देता है, इसलिए इस बच्चे को यहां से आने से रोक दिया जाए। आप देखिए आज के माता पिता एक तरफ बच्चों की शिकायत करते हैं, दूसरी तरफ सुधरने का अगर कोई रास्ता अपनाता है तो उसके रास्ते में बाधक बनते हैं। बहुत से लोग यही कहते हैं ब्रह्मा कुमारी के पास नहीं जाना, वो घर बार छुड़ा देंगे। अरे आपके घर से एक झाड़ू का तिनका भी कोई लेके जाए आप उसके पीछे भाग उठोगे, ये तिनका मेरे झाड़ू का क्यों निकाल के ले लिया? कौन किसी का घर छुड़ा सकता है? लेकिन घर को घर बनाओ। बहुत समय से पुरुष साम्राज्य चला है और धर्म की बागडोर भी पुरुषों के हाथ में रही। हमारे इसमें शिकायत नहीं कि पुरुष हो या स्त्री, लेकिन माता माता नहीं होती, माता निर्माता कहलाती। अगर एक बच्चा कीचड़ से सना हुआ है तो पिता कह देगा जाओ माँ के पास, पहले कपड़े वपड़े चेंज करो तब मेरे पास आना। लेकिन माँ सने हुए बच्चे को भी बड़े प्यार से पकड़ती है, स्वच्छ करती है और फिर कहती जाओ वो भी अपने पापा पास जाओ। ये माँ है जो सने हुए कीचड़ से बच्चे को परे नहीं करती। ये माँ है जो बच्चे की कोई कमी देखती है, मेरा बच्चा अकड़ाकर बोलता है, सीधा नहीं बोलता है, तो वो पूछती रहती है सबसे, मेरा बच्चा थोड़ा अकड़ा के बोलता है, कोई इलाज तो हो तो बताना। और अगर वो बच्चा 15 साल का हो जाता है, 15 साल में भी अगर कोई कहता है फलां जगह पर फलां व्यक्ति ने हकलाते बच्चे को ठीक किया, तो सबसे पहले उसे अपना पुत्र याद आता है, मुझे इसको ले जाना है, मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो माँ में वात्सल्य होता है, माँ में त्याग होता है। इसलिए माँ इस महान कर्तव्य पुरातन संस्कृति को स्थापित करके बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त कर सकती है, क्योंकि वो केवल उपदेश नहीं देती लेकिन स्नेह और वात्सल्य के आधार से उनकी पालना करती है। आज इस विद्यालय में माताएं हैं, क्यों माताओं का आधार ईश्वर ने लिया? माँ का सबसे बड़ा गुण क्या है? जिसे दुनिया ने अवगुण कहा, माता को अगर कोई एक बात बता दो वो जब तक दूसरे को ना बताए उसको चैन नहीं आता, और दूसरे को बता के क्या कहेगी, मैंने तुझे बताया तुम किसी को बताना नहीं। और दूसरे की भी कोई सखी होती है वो उसको कहती है मैं तुझे बता रही हूँ तुम किसी को बताना नहीं, वो किसी को बताए बिना रहेगी नहीं। ईश्वर ने बड़ा सुंदर साधन इंस्ट्रूमेंट सोचा, माताओं को पकड़ो ये मेरी बात को सब तक पहुंचा देंगी। और सचमुच विश्व भर में इस बात को फैलाने के लिए माताएं एक बहुत सुंदर साधन बनी। और आज विश्व के इतने देशों में कोई इंडिया से गई हुई बहने सब सेवा केंद्रों में नहीं है, अमेरिका में अमेरिकन है, फ्रांस में फ्रांसिस है, रशिया में रशियन है, जापान में जापानी है, चाइना में चाइनीज है, वो सभी ज्ञान देने के निमित्त बने। और वास्तव में देखा जाए ये वो ज्ञान है जो जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, पवित्र बनाओ। तो क्या आपका दिल नहीं करता कि हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर, अपने बच्चों को श्रेष्ठ दिशा दिखाकर, अपने घर को एक सुंदर आश्रम बना लें? अगर ऐसा दिल करता है तो आप भी तो ईश्वर के आर्मी में हो ना। अब प्रभु कहते हैं मुझे ऐसी आर्मी चाहिए जो देश तो स्वतंत्र हो गया लेकिन बापूजी की इच्छा राम राज्य बनाने की थी, वो राम राज्य तो बना नहीं, दिनों दिन रावण राज्य बनता जा रहा है। बापूजी के बापूजी स्वयं सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा कहते हैं विश्व को परिवर्तित करना मानव का काम नहीं है। विश्व का मैं पिता हूँ, रचयिता हूँ, मैं अपनी रचना को सत ज्ञान दे करके अपनी शक्तियों से संपन्न करके इस विश्व का नव निर्माण करता। तो आज विश्व के नव निर्माण का कर्तव्य चल रहा है और आप बहनों को आमंत्रित किया गया है कि ना केवल अपने बच्चों को देखो, ना केवल अपने घर को देखो, अपने घर, अपने आप और अपने बच्चों के साथ समाज और अपने सारे विश्व को देखो। थोड़ा समय विश्व के लिए अवश्य निकालिए कि मेरा विश्व पुनः देव विश्व बन जाए, स्वर्ग बन जाए। तो ईश्वर आप बच्चों को अपनी शक्तियों रूपी वरदानों से संपन्न कर देगा। ये दाता का संदेश जो मैं आपको दे रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय राजयोगिनी चक्रधारी बहन ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए प्रश्नों का, उसमें उत्तर भी। और ये बात जब आप कह रहे थे तो इस समय हमारे पास हजारों परिवार हैं देश और विदेश में जिन्होंने अपने जीवन में संस्कारों को, संस्कृति का, संरक्षण करके अपने परिवारों का हम कहें कि नया जीवन, नई प्रेरणा उनको प्राप्त हुई है और ऐसे आदर्श परिवार तैयार करने में, बिखरे परिवारों को फिर से जोड़ने में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे हम बढ़ रहे हैं और वैसे तो कार्यक्रम हम समापन नहीं कहेंगे, जैसे आदरणीय चक्रधारी दीदी जी ने जो प्रेरणा दी वो वास्तव में यहाँ से जाने के बाद हम तो यही कहेंगे कि यहीं से हमने संकल्प किया, वो हमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिली है और अवश्य ही हम इन सब संकल्पों को साकार करेंगे। लास्ट में जब दीदी बोल रहे थे तो मुझे पंक्तियां याद आई कि खुदा ने जब ये जन्नत बनाई तो उसके मन में एक बात आई कि मैं सबके साथ न रह पाऊंगा, इसीलिए उसने माँ बनाई, इसीलिए उसने माँ बनाई। तो हमारा ये रूप संरक्षण का है और आगे से आगे परिवारों को मूल्यों से, संस्कारों से संरक्षित करना भी हमारा उत्तरदायित्व है। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारी बहनों को कि वो आकर हमारे मेहमानों को, हाँ, और उसके साथ में खास आज का कार्यक्रम, इसके बाद आप सभी भोजन करके, डिनर लेकर इसी हॉल में आएंगे क्योंकि 8:30 बजे आपको एक स्पेशल सेशन मिलने वाला है और हमारे बीच अदिति सिंगल बहन जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और आप दिल्ली से यहाँ पर आए हैं और आप विशेष रूप से परिवारों, आपके जो विषय है एम्पावरिंग फैमिली, इस विषय पर आपका विशेष अनुभव है, तो मैं आप सभी को अनुरोध करती हूँ कि आप सभी डिनर करके, कृपया करके आप सभी इस हॉल में दोबारा उपस्थित होंगे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही शांति और प्रेम से आप इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी महिलाओं का धन्यवाद। आप सभी उठे नहीं, कृपया, हमारा आध्यात्मिक नियम है कि हम लोग 3 मिनट परमपिता परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर हम कार्यक्रम को पूरा करेंगे। कृपया सभी बैठ जाएं 3 मिनट के लिए। ओम शांति। मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे माउंट आबू के SDM अंशु प्रिया जी, किसी कारणवश उनको आबू रोड जाना हुआ, उनको इस कार्यक्रम में आना था, उन्होंने खास शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि आपकी संस्था महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, इसीलिए हम उनके भावनाओं को, शुभकामनाओं को आप तक